धन्यवाद भाई नेविल, प्रभु आपको आशीष दे। आज प्रातः प्रभु के भवन में वापस फिर से आना बहुत ही अच्छा है। मैं विश्वास करता हूँ कि एक बार यह कहा गया था, मैं आनंदित हुआ जब उन्होंने मुझसे कहा कि आओ हम प्रभु के भवन को चलें। चार्ली खंबे के पीछे से बाहर आओ और यहाँ आकर और अपने लिए कुर्सी ले लो। यहाँ पर आ जाओ बहन, क्या वहाँ पीछे कहीं कोई कुर्सी है? हम अंदर सब दब सकते हैं। महिला यहाँ पर थोड़ा सा स्थान है, यहाँ आप ऊपर आ जाओ। यहाँ चार्ली, यहाँ आकर बैंक के बराबर में बैठ जाओ ताकि तुम्हें खड़ा ना होना पड़े। हर बार ये लड़का वहाँ दूर कैंटकी से आता है और यहाँ आकर हर प्रातः खड़ा हो जाता है और इसलिए हमने इसे यहाँ से ले लिया। यहाँ पर स्थान है, यहाँ कुर्सी के अंतिम ओर किसी और के लिए। वहाँ पीछे एक महिला खड़ी है, वहाँ पीछे। यहाँ पर आ जाएं, ठीक यहाँ बैठने का स्थान है बहन, वहाँ पास में सीधा आगे आ जाएं। और मैं समझता हूँ कि वहाँ कोई पहिए वाली कुर्सी में है, क्या वे? हाँ, एक और बैठने का स्थान ठीक यहाँ पर है। यदि कोई एक बैठना चाहता है वहाँ पीछे, ठीक यहाँ एक बैठने का स्थान है, एक यहाँ ठीक यहाँ पर भी है आपकी सुविधा के लिए। हाँ, आप वहाँ एक को ले सकते हैं। अब आगे आएं, अपने स्थान को लें और वास्तव में अच्छा अनुभव। हम आपको चाहते हैं कि आप आराम में हो जब हम प्रभु के वचन को लाने का प्रयत्न करते हैं। ओह, निश्चय ही यहाँ पर होना बहुत अच्छा है। मैंने चार्ली को प्रचार मंच पर नहीं देखा, क्या वह वहाँ पीछे है? तो उसे यहाँ लेकर आएं। ओह, मैं पिछले कुछ दिनों से वहाँ चार्ली के साथ हूँ और मैं बिना उसके घर में जाए नहीं जा सकता और खाना खाकर जाता हूँ, इसलिए मैं उसे सीधे मंच पर ला रहा हूँ। इस प्रातः हर प्रातः वो यहाँ आता है और दीवार के पास खड़ा हो जाता है कि किसी को बैठने का स्थान दे। इसलिए इस प्रातः मैंने उसे देखा और उसे वहाँ पर खड़े हुए देखा। मैंने सोचा अब मैं उसे यहाँ लाऊंगा। खैर, यह बहुत अच्छा है। अब हम इस प्रातः भाई रसेल कॉक्स के द्वारा संदेश को सुनेंगे। नेली कहाँ है? मैं, यह उसके लिए एक अच्छी सवारी होगी। कहाँ? हाँ, यही है। तो मैं निश्चित ही बहुत से मित्रों को देखकर यहाँ आनंदित हूँ। पिछले रविवार को जब मैं गया, सारे सप्ताह मुझे बुरा लगा। मेरे एक अच्छे मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ दूर दक्षिण से हैं, भाई वेस्ट, और मैं श्रोता गणों के मध्य में गया था। बाद में मैंने कहा मैं अमुक अमुक से मिलकर आनंदित हूँ और मैंने वहाँ भाई वेस्ट के ऊपर से होते हुए देखा। और जब तक बाहर न निकलने लगे मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं सारे सप्ताह सोचता रहा कि भाई वेस्ट सोचेंगे कि मैंने जानबूझकर उन्हें नहीं देखा, परंतु वह एक मसीही है, इसलिए वह इसे भली प्रकार से जानता है। वह जानता है कि मैं एक सच्चा मित्र, और मैं जानता हूँ कि वह जानता है कि मैं यह नहीं करूँगा। आज प्रातः मैं आते हुए सोच रहा था कि देखते हुए जो लोग विभिन्न स्थानों से आए हैं उनसे मिलूं। अब यहाँ आज प्रातः फिर से भाई वेस्ट यहाँ पर हैं और ओहियो से भाई और बहन किड यहाँ पर हैं और मेरे कुछ, मैं जानता हूँ कि भाई इवान यहाँ पर हैं। मैं कल मोटल पर उनसे मिलना चाहता था, परंतु मेरा अनुमान है कि वे भाई फ्रेड और उनके साथ बाहर गए थे। और प्रत्येक रविवार को इतने दूर मेकॉन जॉर्जिया से यहाँ पर आते हैं। जब मैं बोलता हूँ मेकॉन जॉर्जिया से, यह यहाँ से दूर है, यह लगभग 800 मील है या उससे अधिक। मैं समझता हूँ वहाँ पर हर दिन मैं जब बोलता हूँ अपने परिवार के साथ यात्रा करके आते हैं और यह ईमानदारी है। मैं सोच रहा था, ओह, यदि आपके पास इस प्रकार का मित्र है जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है। अब ये वे लोग सारे वहाँ दूर जॉर्जिया और ओहियो से और राष्ट्र के विभिन्न भागों से इसलिए नहीं आते कि यहाँ इस छोटे से आराधनालय में मुझे सुने। वे यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि वे संदेश का विश्वास करते हैं। वे यही विश्वास करते हैं, वे इस संदेश का विश्वास करते हैं। और तब मुझे इस संदेश के प्रति कितना ईमानदार और सच्चा होना चाहिए, क्योंकि केवल मैं ही नहीं, क्या मैं गलत जा रहा हूँ? परंतु मैं किसी की गलत अगुवाई कर रहा हूँ, समझे? तब परमेश्वर उनकी गलती के लिए मुझे उत्तरदायी ठहराने जा रहा है, क्योंकि इसे सिखाने वाला मैं था, समझे? और मैं आपको बताता हूँ, यह निश्चय ही आपको गहराई से विचार करने को लगाता है जब आप इस प्रकार सोचते हैं। इसलिए मैं आप में से प्रत्येक की सराहना करता हूँ। सोचकर बहुत अच्छा लगता है कि आप सैकड़ों मील उबड़ खाबड़ सड़कों में गाड़ी चलाते हुए और इन बड़े बड़े राजमार्गों पर जहाँ दुर्घटनाएं और दूसरी बातें होती है, परमेश्वर में आपका विश्वास आपको जग जोड़ता है, आपको यहाँ लाता है और वापस ले जाता है। इस प्रकार के मित्रों के लिए हम आनंदित हैं। मैं आप पर परमेश्वर की बहुतायत की आशीषों के लिए प्रार्थना करता हूँ। अब पिछले रविवार मैंने कहा कि हम बोलने जा रहे हैं और फिर प्रार्थना पंक्ति को बुलाएंगे। मैं किसी प्रकार से इसे करना चाह रहा हूँ ताकि अधिक से अधिक लोगों के लिए प्रार्थना करने का मार्ग निकले। और यदि मैं पिछले रविवार के समान और चलता हूँ, मैं कोई मेरे लिए प्रार्थना कर रहा होगा। मैं यहाँ से लगभग 2 बजे चला और मैंने प्रार्थना पत्र नहीं दिए। प्रार्थना पत्र देना कठिन कार्य है। मैं नहीं जानता हूँ कि आप इसे जानते हैं कि नहीं। लोग आपसे घृणा करते हैं। और उस दिन भाई बैकवुड ने कहा, जब हम यहाँ कैंटेकी में थे, कि वह सेवा को करेगा और कार्ड को बांटेगा यदि बिली नहीं आया तो। आप जानते हैं, बिली मेरा अपना पुत्र होने के नाते क्यों वे मुझे कुछ पत्र मिले कि उसने मुझे प्रार्थना पत्र देने की प्रतिज्ञा की थी, उसने मुझे नहीं दिया, छोटा चूहा। इसलिए वह हर एक जन को नहीं दे सकता और हम पंक्ति में बहुतों को नहीं ले सकते, समझे। उसे मेरी सुरक्षा करनी होती है। और जब हम चले तो मेरी बहू ने कहा कि बिल की आपको बिल्ली को प्रार्थना पत्रों के साथ वापस आना होगा, या कहा आप अधिक नहीं कर पाएंगे। और इसलिए, परंतु मैंने कहा पर गलती की, वह विचारों को परखना। तब कोई वापस आएगा, कहेगा मैं भूल गया कि माँ प्रार्थना करवाना चाहती थी। आप जानते हैं कि वे किस लिए वापस आते हैं, विचारों के परखने के लिए, आप समझे। इसलिए, परंतु मैं उन पर दोष नहीं लगाता, मैं भी यही करता, समझे, मैं भी करता। हम मनुष्य हैं और हम सब जीना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या करें। हम ऐसे ही हैं, परंतु आप इन बातों के साथ उतनी ही दूर जा सकते हैं आपका दान, और तब आप लगभग असफल हो गए होते हैं जब यह कुछ बार घटित होता है। और इसलिए भाई बैंक्स इस प्रातः प्रार्थना पत्र बांटने वाले थे और बिल्ली को पिछली रात में आना था। इसलिए मैंने सोचा यह तो बहुत खराब होगा कि एक भले आदरणीय व्यक्ति को लेकर, जैसे भाई वुड्स हैं, प्रार्थना पत्र को बांटना, लोगों की भीड़ उसके ऊपर जमा करना। मैं समझता हूँ बिली बुरा नहीं मानता, उसने इतने लंबे समय तक उन्हें अपने पास रखा था, वह इसे चलने देता है तो ठीक है। अब अगले सप्ताह मुझे ढलास में होना है, इस आने वाले शुक्रवार की रात्रि में वॉइस ऑफ हीलिंग कन्वेंशन में। यदि यहाँ आसपास में लोग हैं, उस एक रात्रि में वहाँ पर होऊंगा उनकी बेदारी सभा में बोलने के लिए। और विषय जिस पर मैं बोलना चाहता हूँ वह संगति के लिए दृष्टिकोण है, यदि प्रभु ने चाहा। और तब हो सकता है आने वाले रविवार को, जो अगला वाला रविवार होगा, यदि प्रभु ने चाहा, अब मैं निश्चित नहीं हूँ, यदि प्रभु ने चाहा, मैं वापस आकर इस विषय पर बोलना चाहता हूँ जो कि मैं आज बोलने वाला था, विंड इन द व्हील विंड में, हवा में चक्रवात। और मैं आज रोगियों के लिए प्रार्थना करने वाला था, और यह बल्कि एक प्रकार से कलीसिया के लिए ताड़ना है, उसके पापों के लिए। और यह कोई बोलने के लिए बहुत अच्छा विषय नहीं है जब आप प्रार्थना पंक्ति को बुलाने जा रहे हैं। आपको प्रार्थना के लिए लोगों का विश्वास बनाना है और परमेश्वर पर और विश्वास को जमाना। इसलिए मैंने भाई नेविल से उद्घोषणा करने के लिए कहा कि इस प्रातः मैं किसी और विषय पर बोलूंगा, लोगों का विश्वास परमेश्वर पर बनाऊंगा। दूसरा वचन, लोगों को फटकार लगाना, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते। इस ओर ये लोगों का विश्वास परमेश्वर पर बनाना है, आप समझे। और इस प्रातः पीछे उस प्रार्थना के कमरे में, या वहाँ पीछे रिकॉर्डिंग के कमरे में, मेरा एक छोटा पुराना मित्र भाई किड, 80 वर्षीय यहाँ बैठा हुआ है। आप में से बहुत से लोगों को स्मरण होगा, जब उस प्रातः मैं उसके पास भागा, वह लगभग 1 वर्ष पहले था, अब इस पर बंद करता हूँ, मर रहा था, बहुत बीमार था, और डॉक्टर ने जीवित रहने के लिए 1 सप्ताह दिया था, या 1 सप्ताह नहीं, वे सुबह तक जीवित नहीं रह सकेगा। उसे यहाँ लाए लगभग 3 प्रातः बीतने के बाद, और अब वह 105 वर्ष के हो चुके हैं, या ऐसे ही कुछ। उसने कुछ क्षणों पहले कहा, वह 132 से नीचे का है, कहा एक लड़के के समान अनुभव करता है। भाई किड, मैं सोचता हूँ क्या आप जरा खड़े हो जाएंगे ताकि लोग जान जाएं कि यह बूढ़ा प्रचारक कौन है। यह है वो। हम कहें प्रभु का धन्यवाद हो, एक मनुष्य जो कैंसर से मर रहा था उस दशा में, उनकी एक प्यारी संगनी है, मैं चाहता हूँ कि वह भी खड़ी हो जाए। मैं बस, बहन किड, आप वहाँ पर कैसी हैं? अब वह देखिए कितनी जल्दी वह खड़ी हो सकती हैं। मुझसे अच्छी। परमेश्वर भाई और बहन को आशीष दे। परमेश्वर की बहुत आशीष उन पर रहे। धन्यवाद बहन। उन्होंने केंटकी के पहाड़ों में कोयले की खान के ऊंचे नीचे रास्तों में होते हुए संघर्ष किया है। निकाले गए, लताड़े गए, उपास उड़ाए गया, सताए गए, जैसा भी हो सका जीवन बिताया। उन्हें कहीं पर मार्ग में वो दाना मिला, उसे पीसा और परमेश्वर के राज्य के लिए जीवन बिताया। और 80 वर्ष हो गए, अब भी सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। अब वे बाहर जाने के लिए बहुत बूढ़े हो गए हैं, इसलिए मैं प्रार्थना के कपड़ों पर प्रार्थना करके और उन्हें भेज देता हूँ। और वे बस उन रुमालों को लेकर वहाँ अस्पतालों में ले जाते हैं और इस तरह की चीजों को लोग आकर और उन्हें ले लेते हैं। अब यह वास्तव में हृदय में चला जाता है, क्या ऐसा नहीं है? यदि आप उनसे मिलने नहीं जा सकते हैं तो उन्हें प्रार्थना करके कपड़ा भेज सकते हैं। इस प्रकार से लोगों के पास विश्वास है, यह बहुत अच्छा है। भाई रोग्रेस भी आज यही कहीं हैं। भाई क्रिच के ससुर जो मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हैं, उनके घर वैसे ही जाता हूँ जैसे चार्ली के और नैली के, और अब वे वहाँ जो केंटकी में हैं, और वहाँ जाकर और उनके साथ सारे समय शिकार खेला करता था। और यहाँ अधिक समय नहीं हुआ, लगभग 13 महीने पहले डॉक्टर ने उसे खोला कैंसर के साथ और कहा वो खत्म हुआ है। मैंने सोचा मेरा मूल्यवान पुराना मित्र अनुभवी पहले महायुद्ध का एक वास्तविक बहादुर व्यक्ति, उसका परिवार, उसे मैंने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया बहुत वर्षों पहले उसके पापों की क्षमा के लिए, यह जानते हुए कि तब वह मसीह की देह में रखा गया और परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार था। मैंने सोचा मेरा बहुमूल्य भाई अब जाने वाला है। उस दर्शन के बाद वो ठीक था, या उस दर्शन के मेरे पास आने से पहले स्वर्ग के विषय में। और तब मैं उससे मिलने गया और कमरे में मेघ धनुष आया। परमेश्वर ने चीजों को बदल दिया। यह 13 महीने पहले की बात थी और वह आज भी यहाँ पर है, खा रहा है। उसने कुछ लिया, कुछ सल्फर की तरह की गोलियाँ ली, उसे यहाँ उसके गले में जला दिया और वह प्रार्थना पंक्ति में आने जा रहा है। मैं सोचता हूँ इस प्रातः आया है, और मैं जानता हूँ कि घोषणा करता हूँ कि जब बिल्ली पहले ही दे चुका है या देने जा रहा है, मालूम है कि वे प्रार्थना पत्र बांटने जा रहे हैं। मैंने उसके दामाद को बताया, मेरा अच्छा मित्र भाई क्रिच, उसे लाने के लिए। मैंने सोचा यदि मैं उससे चूक गया तो मैं उसे पकड़ूंगा और इन प्रार्थना के कमरों में रखूंगा यहाँ पर। परंतु उसके पास प्रार्थना पत्र थे। मैंने कहा बस्ती, मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर चले जाओ। उसका नाम एवरेट है, हम उसे बस्ती कहकर पुकारते हैं छोटा करके। और वह, मैंने उसे बताया, बाहर जाकर और प्रार्थना पंक्ति में आ जाओ, बल्कि जब अभिषेक हो तो मैं प्रार्थना करूँ इसके लिए। इसलिए मैं चाहता हूँ, यदि मुझे मालूम हो मेरे लिए प्रार्थना होनी थी, मैं चाहता हूँ कि कोई अभिषेक में हो जब वे मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हों। अब आइए इस प्रातः हम अपनी बाइबल में से रूत की पुस्तक खोलें। मैं इसमें से कुछ वचन पढ़ने जा रहा हूँ, रूत की पुस्तक में से। अब इससे पहले कि इस विषय पर आए, यदि मैं इस प्रातः मैं अपने मूल पाठ की घोषणा करना चाहता हूँ जिसे छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी कहा गया है, और मैं इसे 4 विभिन्न दृष्टिकोणों से लेना चाहूँगा छुटकारे पर। पिछले रविवार यह सोचते हुए कि कैसे मसीह हमें छुड़ाने आया प्रचार कर रहा था, और तब आज मैं इस पर बोलना चाहता हूँ, छुड़ाने वाला क्या है, वह कैसे छुड़ाने वाला बन गया। और स्मरण रखिए, एक छुड़ाने वाला आपको पूर्णतः छुड़ाता है। जब वह आपको छुड़ाता है आपके पापों से, आपकी बीमारी से, हर चीज से जो गलत है, वह एक छुड़ाने वाला है। अब इससे पहले इसे लें, आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और उससे प्रार्थना में बातें करें। अब अपने झुके हुए सिरों के साथ मैं सोचता हूँ कि कितने लोग आज प्रातः उसकी उपस्थिति में चाहते हैं कि उन्हें प्रार्थना में स्मरण किया जाए। अपने हाथों को उठाने के द्वारा कहें, परमेश्वर देखो आप मेरे निवेदन को जानते हैं, परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। हमारे स्वर्गीय पिता, आज मैं बहुत आनंदित हूँ कि वहाँ एक बड़ी ऊंची सामर्थ है, परमेश्वर, जानते हुए कि हम उसके पुत्र मसीह यीशु के द्वारा अपनी पहुंच कर सकते हैं और जो हमने मांगा है उसका एक उत्तर पाते हैं। जैसे कि बीती सभाओं में हम बोल रहे थे कि किस प्रकार से मनुष्य लोग भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़कर मारे मारे फिरे और निराश थे, एक नगर की खोज में थे जिसका बनाने और रचने वाला परमेश्वर था। यदि वे यह जानते कि वे कैसे कभी एक बार उस तक निकट पहुंच सकते हैं, यदि वे ढूंढ सकते हैं कि वह कहां था। और अय्यूब पुराने प्राचीन ने कहा, यदि मैं जाकर उसका द्वार खटखटा सकता, दूसरे प्रकार से यदि मैं ढूंढ सकता कि वह कहां पर निवास करता है, तो मैं उसके साथ साथ घर चला जाता और उससे आमने सामने बातें करता। परंतु मनुष्य के लिए ऐसा करने का कोई मार्ग न था, क्योंकि उसने पाप किया था और स्वयं को अलग कर लिया था और परमेश्वर से अपरिचित हो गया था। परंतु उस अमूल्य के द्वारा जो आया और मार्ग को खोल दिया और हमारे पापों को क्षमा कर दिया और हमें परमेश्वर के सम्मुख ले आया, परदेशियों के समान नहीं, परंतु जैसे बालक अपने पिता के पास आते हैं यह जानते हुए कि वह हमारे हर निवेदन को जो हम मांगते हैं हमें प्रदान करेगा। केवल एक ही नियम रखा जो है, यदि तू विश्वास करे, यह सहमति है। शैतान दावा करता है कि हम विश्वास नहीं करेंगे और परमेश्वर कहता है हम विश्वास करेंगे। अब लड़ाई जारी है और हमें निर्णय लेना है। हमारा निर्णय जिधर भी हो यह उसी प्रकार होगा और इसी प्रकार बताया गया। और यह बहुत शानदार लिखा हुआ है, विश्वास करने वालों के लिए सारी बातें संभव है। और आज हम विश्वास कर रहे हैं, आ रहे हैं दिव्य पक्ष पाने के लिए, तेरे निकट आ रहे हैं और तुझसे विनती कर रहे हैं कि तू हमारे निवेदनों को सुनेगा। और हर हाथ जो उठा हुआ है, आप जानते हैं कि उनके हाथों के नीचे उनके हृदयों में क्या अर्थ था, क्योंकि यह लिखा हुआ है कि तू हमारी भावनाओं और मस्तिष्क के विचारों को जानता है और विचारों को परखता है। और परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी महानता के और अनुग्रह के अनुसार प्रत्येक निवेदन का जिसका उल्लेख किया गया है उत्तर देंगे। प्रभु, आज हम मांगेंगे कि आप मेरी सहायता करेंगे जो बहुत ही आवश्यकता में है, शायद भक्त मंडली में यह जानते हुए यहाँ आपके सामने रखा है, जो कि प्रभु यीशु के लहू से खरीदा हुआ है। संभव है यहाँ पापी बैठे हुए हों जो पापों से बंधे हुए हैं, यह उनके लिए कठिन हो और असंभव है उनके लिए कि वे ऐसे स्थान पर पहुंचकर मसीह को स्वीकार करें जब तक शैतान ने उन्हें अपनी सामर्थ्य में जकड़ रखा है। परंतु ये जानते हुए कि लिखा है, मेरे नाम से वे दुष्ट आत्माओं को निकाल देंगे। और प्रभु, आज हमें सामर्थ्य दे वचन के प्रचार में से होते हुए कि संदेह के हर दुष्ट आत्मा को निकाल दे और अंधविश्वास और भय लोगों के हृदय और मस्तिष्क से, कि वे जो घबराहट के बंधन में हैं और संदेह को मसीह की बाहों में ला सके। और यह भी लिखा हुआ है कि वे बीमारों पर अपने हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। यहाँ पर वे जो मसीही हैं और जो बीमारी की दुष्ट आत्माओं से बंधे हुए हैं, प्रभु आज मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे कि प्रत्येक बीमार और अपाहिज व्यक्ति को जो इस भवन में आज यहाँ है, कि महान पवित्र आत्मा को ही प्रत्येक हृदय में एकाधिकार मिले और प्रत्येक शरीर जो दिव्य उपस्थिति में है, अपने वचन के द्वारा हमसे बात कर। तेरा वचन सत्य है, यह न जानते हुए कि क्या कहना है, परंतु पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि वह हमारा मार्गदर्शन कर सके और पूर्ण सत्य में दिशा निर्देश कर सके। प्रभु, इसे प्रदान करें, स्वयं के लिए महिमा लें और अपने दास का अभिषेक करें। और तेरा वचन पहले ही अभिषिक्त है, जैसे कि आप प्रत्येक हृदय को लेते हैं, जैसी हमारी आवश्यकता है आपको महिमा देते हैं। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम में हम यह मांगते हैं, आमीन। पढ़ने से पहले मैं यह छोटा सा प्रचार वाक्य बोलना चाहता हूँ जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। यदि कोई नदी जिसे आप पार नहीं कर सकते और पहाड़ है जो आप पार नहीं कर सकते, केवल स्वर्ग के परमेश्वर को स्मरण करें जो विशेषज्ञ है उन बातों में जो दूसरे नहीं कर सकते। मैं रूत की पुस्तक में से पढ़ रहा हूँ, पहला अध्याय। अब जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, वहाँ उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम अलीमेलेक था और उसकी पत्नी का नाम नाओमी था और उसके दो बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। ये एप्राती अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे और मोआब देश में आकर और वहाँ रहने लगे। और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी और उसके दो पुत्र रह गए। और इन्होंने एक एक मुआबिन ब्याह ली। एक स्त्री का नाम तो ओर्पा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहाँ कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब वो स्त्री नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेकर लौट जाने को चली, उन्हें भोजन वस्तु दी है उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत, तब वह अपनी बहुओं समेत उस देश से जहाँ रहती थी निकली। तब वह अपनी बहुओं समेत और उस स्थान से जहाँ रहती थी निकली और वे यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मैके लौट जाओ और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। और यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर पति करके उनके घरों में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। और उन्होंने उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगे। और नाओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र हैं जो हो सकता है तुम्हारे पति हो? हे मेरी बेटियों, लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बहुत ही बूढ़ी हूँ। और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके सियाने होने तक आशा लगाए ठहरे रहती और तू उनके निमित्त पति करने को रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसा न हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। और वे चिल्ला चिल्ला कर और रोने लगे। वे फिर से उठी और ओर्पा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। तब उसने कहा, देख, तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। और रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग व छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग होंगी, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। मैं आज प्रातः की छोटी वार्तालाप का शीर्षक, जैसे कि मैं इसे सिखाता हूँ, आपके पास छुटकारे का विश्वास लाने का यत्न करता हूँ, और ये क्या है और इसे कैसे प्राप्त करें। मैं इसका शीर्षक देना चाहता हूँ, छुड़ाने वाला निकट कुटुम्बी। अब किसी का छुटकारा करना, उसे वापस लाना, कुछ जो खो गया हो, जैसे कि गिरवी की दुकान में रखना, और आप जाकर उसे छुड़ाते हैं, यह दाम देकर छुड़ाया गया, तब यह आपकी व्यक्तिगत संपत्ति होती है, और जब आप इसे छुड़ा लेते हैं। परंतु इसराइल में छुड़ाने का नियम उसे निकट कुटुम्बी होना चाहिए, ताकि संपत्ति को छुड़ाए या कुछ जो खो गया हो। हमारी कहानी का आरंभ इसराइल के शासक के समय में होता है, जो कि न्यायी थे, यहोशू की मृत्यु के पश्चात। और इस सुंदर चित्र को पाने के लिए पहले शमूएल में पहले पांचवे या छठे अध्याय को पढ़ें, और आप इसकी वास्तविक कहानी को पाएंगे। परंतु हम इसमें से अपनी विषय वस्तु लेने के लिए इसमें से छलांग लगाएंगे, जो कि कुछ समय पहले मैंने रूत की पुस्तक से आरंभ किया और 3 या 4 सप्ताहों में इसमें से होकर गए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से एक बार आरंभ किया और इसे पढ़ने में लगभग पूरा वर्ष लिया। बस थोड़ा सा पवित्र वचन पूर्णतः बाइबल में एक दूसरे से मेल खाता है, यह सुंदर है। इसलिए हम जानते हैं कि बाइबल प्रेरणा से है, क्योंकि गणितीय और हर प्रकार से कोई दूसरा साहित्य नहीं लिखा गया जो कि स्वयं में कहीं भी विरोधाभास नहीं करता है। यह पुस्तक अलग अलग लगभग 4000 वर्षों में लिखी गई है, बाइबल की पुस्तकें, और वे कुछ लोगों के द्वारा लिखी गई। मैं भूल गया कि कितने लोगों ने इसे लिखा है, मुझे स्मरण नहीं है, परंतु मुझे खेद है, मैं लगभग 60 कहना चाहता हूँ, परंतु मैं हो सकता है गलत हूँ, 40 व्यक्तियों ने बाइबल को हजारों वर्ष के अंतराल में लिखा, कभी भी एक दूसरे को नहीं जानते थे, या एक दूसरे को देखा था, या एक दूसरे को बहुत बार पढ़ा, और एक भी वचन दूसरे से विरोध नहीं करता, यह प्रेरणा से हुआ। अब बहुत से लोग इस रूत की पुस्तक को देखते हैं, जैसा कि वे कहते हैं यह बाइबल की प्रेम कहानी है, बाइबल एक प्रेम कहानी है, सारी बाइबल प्रेम कहानी है। केवल ये एक प्रेम कहानी ही नहीं है, परंतु यह एक भविष्यवक्ता है, यह केवल एक भविष्यवक्ता ही नहीं, परंतु यह एक इतिहास भी है, यह केवल एक प्रेम कहानी नहीं, एक इतिहास, एक भविष्यवक्ता, यह स्वयं परमेश्वर है। क्योंकि आरंभ में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। इसलिए परमेश्वर वचन है जो छपा हुआ है, इससे बात खत्म हो जाना चाहिए। भाई, परमेश्वर छपा हुआ है, यहोवा पुस्तक में छपा हुआ है, और यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, परंतु यह पूरी तरह से सारा सत्य है। इसका हर चरण आपके प्राणों से लगा हुआ है, यह वहाँ पर है, यह सत्य है, और परमेश्वर अपने वचन का समर्थन करता है। और ये कहानी और सारे पुराने लेख लिखे गए हैं, जब वे पवित्र लोग बाइबल को अलग अलग कर रहे थे, जब वे इसे पुराने नियम में रखकर मिलाने की कोशिश कर रहे थे। रूत की पुस्तक एक ऐसी प्रमुख पुस्तक है जिसे उन्होंने स्वीकार किया। क्यों? यदि यह केवल एक प्रेम कहानी है, तो वो क्यों फिर पुराने संत लेखकों ने इसे प्रेरणा से युक्त पुस्तक स्वीकार किया? क्योंकि इसमें एक छिपा हुआ प्रकाशन है, और इस छिपे प्रकाशन में आप इसके वास्तविक अर्थ को पकड़ लेंगे, यह आपको वास्तव में परमेश्वर के समीप लाएगा। इस प्रातः मैं अपने पूरे प्राण से प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर प्रत्येक हृदय को पकड़ लेगा, इतना ध्यान आकर्षित करेगा, इतना तक कि वह स्वयं को प्रकट करेगा कि इस कहानी में वह क्या है, वह आपके लिए क्या है, उसे कैसे स्वीकार करें। और जब आप एक बार उसे देख लेते हैं, तो ये इतना साधारण है, तो आप सोचेंगे कि यह कैसे आपके सिर के ऊपर से कैसे निकल गया था, परंतु यह केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही प्रकट हो सकता है। अब बहुत से बाइबल पढ़ते हैं, खड़े होकर इसे पढ़ते हैं, और एक पन्ने को पढ़ते हैं और एक पन्ने को पढ़ते हैं, आप इसे कभी भी नहीं समझेंगे, क्योंकि यह पहेलियों में है। और यीशु ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि इसको इस प्रकार बनाया है, कहा कि तूने इसे ज्ञानियों और समझदार से इसे छिपा रखा, और ऐसे जो सीखेंगे उन बालकों पर प्रकट करेगा। जैसे कि मैंने अक्सर कहा है, श्रीमती ब्रैनम पीछे बैठी है आज प्रातः, परंतु जब मैं विदेश में होता हूँ तो वो मुझे पत्र लिखेगी। वह लिखेगी, प्रिय बिल, आज रात्रि मैं यहाँ पर बालकों के संग बैठी हूँ, मैं आपके विषय में सोच रही हूँ। और वह आगे बढ़ते हुए लिखती है कि वह क्या करने जा रही है, परंतु मैं उससे प्रेम करता हूँ और मैं उसे भली भांति जानता हूँ। मैं पंक्तियों के बीच में पढ़ सकता हूँ, मैं ठीक ठीक जानता हूँ कि वो क्या कह रही है। देखो, भले ही वो यहाँ पर लिखे या ना लिखे, समझे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो क्या कह रही है। यह क्यों है? यह समीप का संबंध है, हम एक हैं, समझे। और मेरा स्वभाव जानती है, मैं उसको जानता हूँ। वह बस बैठकर मेरी ओर देख सकती है और मैं बता सकता हूँ कि वह क्या कहने जा रही है, क्योंकि मैं उसे इतनी अच्छी तरह जानता हूँ। और मेरे साथ भी वह यही कर सकती है। अब यह क्या बात है, एक दूसरे में विश्वास, प्रेम। बीते कल सुबह हम पलंग में थोड़ी देर तक लेटे रहे और बालकों को विद्यालय नहीं जाना था और विभिन्न चीजों पर बातें कर रहे थे और कैसे घृणा क्या थी। मैंने कहा, घृणा का आरंभ है इसलिए इसका अंत होना है, प्रेम का कोई आरंभ नहीं है इसलिए इसका अंत नहीं है। घृणा बहुत समय के लिए होता है, प्रेम अनंत है। घृणा का आरंभ होता है और इसका अंत होगा, प्रेम का कभी आरंभ नहीं हुआ, यह कभी समाप्त नहीं होगा, समझे, वह अनंत था। और जब एक मनुष्य एक स्त्री से प्रेम करता है और उससे विवाह करता है क्योंकि वह सुंदर है, तो उसका अंत हो जाएगा। परंतु जब एक पुरुष एक स्त्री को पाता है जिससे वह प्रेम करता है, वह नहीं जानता कि क्यों, परंतु उससे प्रेम करता है। और वह एक पुरुष को पाती है जिसे वह प्रेम करती है, कोई मतलब नहीं कि वह कैसा दिखाई पड़ता है, वह उसे प्रेम करता है, वह उससे प्रेम करती है, तो वे महिमा में अनंत साथी है। वे कर मृत्यु ना कुछ और उन्हें कभी अलग कर सकता है, क्योंकि वे अनंतता से हैं और वे समय की अवधि में बाहर आए और वापस अनंतता में चले जाएंगे। अनंतता एक देह में आ गई जो कि समय कहलाया, तब फिर वापस अनंतता में चले जाते हैं, यह नष्ट नहीं हो सकता। एक स्त्री जो सुंदर है उसकी सुंदरता धूमिल हो जाएगी, निश्चित है, आप कुछ वर्षों को दें, संभव है आज वह सड़क पर मटक रही हो, कोई आधे कपड़े पहने हुए स्त्री। शराब खाने वाले जो देश में है उनकी तुलना में अधिक प्राणों को नरक में भेज रही है, परंतु वह सड़क पर मटकेगी यह सोचते हुए कि वह कुछ तो है। जैसे कि बाइबल ने कहा, वे गर्दन लंबी करेंगे, मटकाना चाहते हैं, जिसका अर्थ ठुमकना, जैसे वे करती हैं, अंत के दिनों में पवित्र वचन को पूरा कर रहे हैं और यह नहीं जानते। वे आंगन में भद्दे कपड़े पहने खड़ी हैं, पुरुष उसे देख रहे हैं और नहीं जानते। वह अपने पति के लिए या पुरुष मित्र के लिए सुयोग्य हो सकती है, जितना हो सकती है, परंतु न्याय के दिन सैकड़ों पुरुषों के साथ व्यभिचार करने के लिए उसे उत्तर देना होगा, उनकी आत्माएं, और वे इसे नहीं जानते। बाइबल कहती है, नंगे हैं, अंधे हैं और यह नहीं जानते। दयनीय भाग यह है कि यह नहीं जानते। परंतु क्या आपको मालूम है कि वो सुडोल शरीर जो परमेश्वर ने उस लड़की को दिया है, हो सकता है अगले रविवार को इस समय तक सड़ रहा हो। वह ऊंचा गेहुआ और सुंदर पुरुष हो सकता है अगले रविवार कूड़े के ढेर को छोड़ और कुछ न हो, यह सब नष्ट हो जाता है। परंतु भीतर से परमेश्वर प्रेम अनंतता के लिए जीवता है, इसलिए भीतर से ध्यान से देखें, अपनी दृष्टि उद्देश्य पर रखें। अब यह कहानी कुछ इसी प्रकार से आरंभ होती है, जैसे एक प्रेम करने योग्य अच्छी स्त्री, उसका नाम नियोमी था। नियोमी का अर्थ होता है मनोहर। एलिमेलेक उसका पति था, जिसका अर्थ आराधना, मनोहर आराधना उसका परिवार था। उनके एक पुत्र था महलोन, जिसका अर्थ बीमारी, और क्लियोन दूसरे का अर्थ थका, उदास, दुखी, यह परिवार था। और इज़राइल के देश में अकाल पड़ा, और पहली गलती जो कभी कोई यहूदी करता है कि देश को छोड़ना। परमेश्वर ने उन्हें वह देश दिया है। जब अब्राहम को देश दिया गया तब परमेश्वर ने उसे कहा कि इस देश को न छोड़ना। जब वह गरार में गया तो उसने ये गलती की और परेशानी में फंस गया। एक यहूदी को कभी भी फिलिस्तीनी नहीं छोड़ना है, वह उसको दिया गया स्थान है। और उन्हें समस्त संसार में निकाल दिया गया था और अब वे फिर वापस जा रहे हैं। ओ, आज प्रातः हमारे पास बहुत सुंदर कहानी है, वे वापस जा रहे हैं। नियोमी अकाल के कारण बाहर चली गई, नियोमी और एलीमेलेक, और वे मोआब को चले गए। अब वापस कहानी पर, जैसे कि आप सुनते हैं, आप यह समझने के योग्य होंगे कि यह क्या है। अब मोआब, मोआबी अवैध बालक से निकले हैं, जो कि लूत की पुत्रियां थी। परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा जब वे सदोम की आग से बच निकले, तब पुत्रियों ने पिता को शराब पिलाई और उसके संग एक पत्नी के समान रही। उन्हें एक बालक उत्पन्न हुआ और उनमें से एक उत्पन्न हुआ और मोआब के उस देश को अस्तित्व में लाया। कहलाने वाले मसीह हुए परंतु पगानवाद में मिल गए थे। और देखिए, प्रतिज्ञा का देश छोड़ दिया कोई मतलब नहीं है। ये कितना बुरा था, दूसरे देश में परदेसी हुए, मुसीबत को लाया। और किसी समय में एक विश्वासी परमेश्वर के दिए हुए स्थान से हट जाता है। बहुत सी बार राजनीति में यह चुनाव आ रहा है और आदि आदि, एक अच्छा व्यक्ति हो सकता है और वह इन स्थानों को छोड़ देगा। एक निश्चित सेवक होने के समान मैं जानता हूँ, नगर का मेयर होने के लिए चला और जब उसने यह किया तो अपनी सेवकाई के भाग से हट गया और शैतान ने उसे ले लिया। यदि कोई भी मसीही इन स्थानों से हट जाता है, अच्छा मैं बस आज रात्रि जाऊंगा और उन लड़कों के साथ जमघट के कमरे में बैठूंगा थोड़ी देर के लिए, मैं कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, मैं बस थोड़ी सी पीऊंगा। आप अपने स्थान से हट गए, वापस आए, आप केवल मुसीबत के लिए अपने रास्ते को स्थापित कर रहे हैं। ओह, बाकी सारी लड़कियां धूम्रपान करती है, मैं भी एक पीकर देखती हूँ। आप अपने स्थान से हट गईं, ऐसा न करें, अपने ही घर में रहें। नहीं, ठीक है, यहाँ हर कोई मुझे पुराने विचार वाला कहकर बुलाते हैं, वे मुझे पुराने चलन का कहते हैं। जो भी है वहीं पर बने रहिए, यही आपका स्थान है, मसीह में स्थिर रहें। नियोमी अकाल के कारण उस देश से निकलकर रोटी की खोज में मोआब को चली गई। उसे यह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें से बाकी के यहूदा बैतलहम में ही बने रहे। बैतलहम का अर्थ होता है बेतेल, परमेश्वर का घर, महिमा का घर, और वे वहाँ पर बने रहे। और वह अपने पति के साथ चली गई और उसके दो लड़कों ने मोआबी लड़कियों से विवाह कर लिया। परंतु यदि परमेश्वर ने करने के लिए किसी चीज का अभिषेक किया है तो जो भी हो वह घटित होगा। यही कारण है कि मैं पहले से चुन लिए जाने का विश्वास करता हूँ, चीजों के विषय में परमेश्वर का पूर्व ज्ञान। तब हम वहाँ पाते हैं मृत्यु ने परिवार पर आक्रमण किया और वे पीछे की ओर जाना आरंभ हो गए। लड़का मरा, दोनों लड़के मर गए और पिता मर गया, और पीछे हटना रूत आरंभ हुई, ओरपा और नियोमी। अब आज प्रातः मैं यह पसंद करना चाहता हूँ, नियोमी वो बूढ़ी स्त्री, ऑर्थोडॉक्स कलीसिया, यहूदी ऑर्थोडॉक्स कलीसिया, रूत मोआबिनी, एक अन्य जाति मसीही कलीसिया होने के नाते नई कलीसिया। मैं इस पर नए पक्ष से पोछ करना चाहता हूँ। रूत, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, रूत निर्णय को ले रही है, अपना निर्णय ले रही है, रूत सेवा कर रही है, रूत विश्राम कर रही है, रूत ने पुरस्कार पाया। जैसे कि वापस आते हैं, रूत निर्णय ले रही है, रूत ने जब अपना निर्णय ले लिया तब वह सेवा कर रही है, तब रूत विश्राम कर रही है, तब रूत पुरस्कृत होती है। अब वहाँ पीछे मार्ग पर समय आता है, जैसे कि वह कलीसिया का प्रतीक है या मसीह का, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति समस्त मसीह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। क्या आप ये जानते हैं? आप अपने व्यवहार में जिस प्रकार आप व्यवहार करते हैं और जो आप करते हैं, आप मसीह की संपूर्ण देह का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप कहते हैं परंतु मैं तो एक साधारण सदस्य हूँ, इसका कोई मतलब नहीं। जब आप मसीह नाम लेते हैं तो आप मसीह और उसकी कलीसिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको उसी प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए। आपको एक सज्जन पुरुष और महिलाओं के समान जीवन व्यतीत करना चाहिए। संसार के कार्यों को कभी न करें, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी की समस्त दृष्टि आप पर लगी हुई है। कि एक चीज का प्रतिनिधित्व करें कोई मतलब नहीं कि आप कितने निर्बल हैं, आप कितने छोटे हैं। अपने मुंह को सीधा रखें, क्योंकि आप एक मसीही हैं। अब रूथ एक पागान थी, मूर्तियों की उपासना की थी, और ऐसी ही ओरवा भी, और वे अपने मार्ग पर थे, अपनी सास के साथ वापस आ रही थी, क्योंकि उसने सुना था कि यहूदियों के बैतलहम पर से परमेश्वर ने वह संकट हटा दिया, और लोगों के पास रोटी थी, वह वहाँ 10 वर्षों से थी। ऐसा ही एरेशीम कहता है, लगभग 10 वर्ष, इतिहासकार। और दुखी होकर वापस आ रही है, और उसका पति मर गया, उसके बालक मर गए अपनी 2 बहुओं के साथ। तब उसने घूमकर उन पर दृष्टि डाली और कहा, तुम क्यों मेरे साथ जाओ, अब तुम कुछ नहीं कर सकती, केवल परेशानी होगी। कहा, मुझे दुख है कि परमेश्वर का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। इज़राइल ने ये कितनी बार सोचा कि ना जानते हुए कि यह सब परमेश्वर की योजना थी, किस प्रकार से विलाप करने वाली दीवार ठीक यरूशलेम के बाहर ही है, अब भी वहाँ है। मंदिर के पुराने पत्थरों को उन्होंने बटोरकर और एक दीवार बनाई, और उन्होंने आंसुओं से रो रोकर उसे घिसकर चिकना कर दिया। यहूदी हाथों से रोते हुए और यहोवा से विनती कर रहे हैं, यहोवा। उन्हें यह एहसास नहीं होता कि उनका समय अब निकट है। रोने वाली दीवारों, ये पत्थर एक समय बादशाह के संदूक के घर में थे। दाऊद राजा ने इन पत्थरों पर अपनी दृष्टि डाली थी। हे यहोवा, तू कहाँ है, समझे, नहीं जानते हुए कि जल्द ही उसका राजा वापस आएगा, उसका छुड़ाने वाला। उन्हें थोड़े समय के लिए बाहर निकलना था। नियोमी ने सोचा, क्यों परमेश्वर प्रभु का हाथ मेरे विरुद्ध निर्दयी हुआ है, मेरी बहू के लिए परमेश्वर ने मुझे बाहर निकाला, मैं निकाली हुई हूँ, मैं नहीं जानती कि मैंने कभी क्या कर दिया है, परंतु मैं बाहर निकाली हुई हूँ, समझे। परमेश्वर अपनी योजना पर कार्य कर रहा था, क्योंकि सारी बातें परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए भलाई उत्पन्न करती है, कोई मतलब नहीं कि वह क्या है। उसने कहा, तुम अपनी माँ के घर वापस चली जाओ और अपनी माताओं के घर में विश्राम पाओ। तुम्हारे पति मर गए हैं और तुम युवा और सुंदर महिला हो। वापस चली जाओ, वापस जाओ जहाँ से तुम आई हो, वहाँ विश्राम पाओ। परमेश्वर तुम पर अनुग्रह करे, क्योंकि तुमने मरे हुओं के प्रति कृपा की है, और जब से तुम्हारे पतियों की मृत्यु हुई है तुमने सुयोग्य जीवन बिताया है, और तुम मेरे प्रति कृपालु रही हो, एक बूढ़ी विधवा पति से रहित, और तुम मेरे साथ बनी रही हो। वापस चली जाओ और परमेश्वर तुम्हारे घरों में तुम्हें विश्राम दे। वे रो पड़ी। उसने कहा, यदि मैं बूढ़ी हूँ, मेरे पास और बालक नहीं हो सकते, परंतु यदि मेरे पास पति होता और बालक होता तो उससे क्या भला होता। तुम उस बालक की कभी भी प्रतीक्षा ना करती। उन दिनों में यह वास्तव में नियम था कि यदि भाई मर गया या उसका दूसरा भाई अविवाहित होने पर उसे उसकी पत्नी को लेना होता था कि अपने मरे हुए भाई के नाम को उठाए। परंतु वह कहा, तुम उन बालकों के लिए प्रतीक्षा ना करोगी, इसलिए वापस जाकर अपने अपने पतियों के घर में विश्राम पाओ, अपनी माँ के पास वापस चली जाओ। और ओरपा एक गुनगुनी कलीसिया का प्रतीक है, जो कभी आरंभ हुई एक कलीसिया का प्रतीक, जो पूरी रीति से नहीं जाएगी। उसने कहा, सुनने में अच्छा लगता है, इसलिए उसने अपनी सास को चूमा और फिर वापस चली गई। यह एक गुनगुने विश्वासी का प्रतीक है, जो यीशु का मसीह होने का विश्वास करेगा और फिर घूमकर उन्हीं बातों में चली जाएगी जहाँ से वह आई थी। वह मनुष्य जो प्रभु के थोड़े लोगों के संग मार्ग में सांझी होगा, फिर घूमकर वापस चला जाएगा, जैसे कुत्ता अपनी उल्टी पर और सुअरनी अपनी कीचड़ में, जैसा कि बाइबल ने कहा। अब वह अपने देवताओं के पास वापस चली गई। बहुत सी बार हम अपने आरंभ के देवताओं के पास वापस चले जाते हैं। संभव है हमारे पास गलत बातों की अभिलाषा भरी दृष्टि हो, हम वापस फिर से अभिलाषा में चले जाएंगे। हो सकता है हमारे पास शराब पीने की प्रतिमा हो, धूम्रपान की प्रतिमा हो, झूठ बोलने की प्रतिमा हो, चोरी करने की प्रतिमा हो, सब प्रकार की प्रतिमा हो, और तब दिखावा किया और बपतिस्मा ले लिया और फिर से घूम गए। क्या ही दुख की बात है। स्मरण रखिए, उसका नाम उसमें फिर न लिया गया, उसके निर्णय के कारण वह निकाली गई। गुनगुनी कलीसिया, गुनगुने विश्वासी, जैसे कि प्रत्येक विश्वासी कलीसिया का प्रतिनिधित्व करता है, प्रत्येक अमेरिकन अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता है, प्रत्येक जर्मन जर्मनी का प्रतिनिधित्व करता है, प्रत्येक मसीही मसीह का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ वह अपनी पीठ को घुमाती है और उन चीजों में वापस जाती है जहाँ से वह कभी आई थी। कैसे वो लोग, यहाँ तक कि प्रचारक लोग ने कभी तो प्रभु के मार्ग को लेंगे। और जब आप उनसे पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की बात करते हैं, बेकार की बात है कहकर उससे मुंह मोड़ लेते हैं। यह ओरपा है। उन्हें यीशु मसीह के नाम के विषय में बताएं। मनुष्यों के मध्य में स्वर्ग के नीचे कोई नाम नहीं दिया गया जिससे कि आप बचाए गए हो। आप वचन और कार्य में जो भी करते हैं सब कुछ यीशु मसीह के नाम से करें। स्वर्ग के नीचे यदि कोई नाम है जिससे कि आपको बचाया जाना है, तब पत्रस ने पेंटिकॉस्ट के दिन कहा, यदि तुम बचना चाहते हो तो प्राश्चित करो और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो अपने अपने पापों की क्षमा के लिए। इस प्रकार से वे क्षमा किए गए। और एक मनुष्य लोकप्रियता के कारण वह बाइबल को इस पर पकड़े नहीं रह सकता, परंतु लोकप्रियता के कारण कलीसिया को चूमेगा, संदेश को चूमेगा, मसीह को चूमेगा। अलविदा। वहीं वापस चला जाता है जहां से निकलकर पवित्र हुआ था। ओरपा, गुनगुनी, बाहर निकाली हुई। परंतु ओह, कैसे मैं उस छोटी रूथ को पसंद करता हूँ। उसे एक निर्णय को लेना था, मुझे एक निर्णय को लेना था, आपको एक निर्णय को लेना है। आप किसी भी एक प्रकार का निर्णय लिए बिना आज प्रातः इस दरवाजे से बाहर नहीं जाएंगे। आज आप इस कमरे को नहीं छोड़ेंगे, या तो पहले से बेहतर पुरुष या स्त्री होकर, या एक बदतर पुरुष या स्त्री होकर। इसे अस्वीकार करके आप बदतर हो जाएंगे, इसे पाने के लिए अगली बार और कठोर हो जाएंगे, या आप और बेहतर बनकर बाहर जाएंगे। उसके जीवन में यह प्रदर्शन का समय आ गया। यह प्रदर्शन प्रत्येक के जीवन में आता है, और रूथ को निर्णय को लेना था। इसलिए बाइबल ने कहा कि उसकी सास ने उसे बताया, अपने देवताओं के पास वापस चली जा, जैसे तेरी बहन ने किया। गुनगुनी के समान वापस चली जा, क्यों नहीं तू वापस चली जाती। सुसमाचार प्रचारक, यदि आप जाना चाहते हैं, चले जाएं। वास्तविक सच्चे प्रचारक तो वह इसे लोगों के वर्ग के सामने रखेगा। आप अपना निर्णय लें, आप अपने पैरों पर खड़े हों। गुनगुना, ढीला ढाला, अंदर और बाहर यह नहीं कहेगा, परंतु परमेश्वर का एक वास्तविक सेवक आपके गोद में डाल देगा, अपना निर्णय ले। रूथ ने कहा, जहाँ तू जाएगी मैं जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू रहेगी मैं रहूंगी, जहाँ तू मरेगी मैं मरूंगी, और जहाँ तू गड़ेगी वहीं मैं गड़ूंगी। यह वास्तविक निर्णय है। प्रभु, मैं आपको अपने बचाने वाले के रूप में ले लूंगा। यदि बाइबल कहती है प्राश्चित करो और बपतिस्मा लो यीशु मसीह के नाम का, यह मैं करूंगा। यदि बाइबल ने कहा कि मुझे पवित्र आत्मा प्राप्त करना चाहिए, तो मैं वही करूंगा। यदि बाइबल मुझे बताती है कि यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है, मैं इसका विश्वास करूंगा। मैं बाइबल और परमेश्वर को ले लूंगा, क्योंकि जो उसने लिखा और जो वह है, कोई मतलब नहीं किसी ने क्या कहा। यहाँ वह सच्ची रूथ है। उसने अपना निर्णय लिया। उसे या तो पीछे लौटना है या आगे जाना है। इस प्रातः हम उसी स्थिति में खड़े हैं, पीछे जाएं या आगे जाएं, कभी भी वापस न जाएं। आइए आगे बढ़ें। उस प्रतिज्ञा के देश में वे चले गए, अपरिचित लोगों के देश में। अब रूथ एक विश्वासी का प्रतीक है। क्या विश्वासी क्या है? जब वह पुरुष या महिला संसार से बाहर निकलकर आता है, वह मसीही विश्वासियों के मध्य में आता है। स्त्रियां जो धूम्रपान पीना और टोलियों में ताश खेलती थी और आदि आदि और सब प्रकार की सुंदर दिखने वाली चीजें और एक प्रकार की उलझी हुई पंखों की चिड़िया, परंतु अब वो बदल गई है। उसने परमेश्वर के साथ जाने का निर्णय ले लिया है। अब वह उन लोगों में आ गई है जो इस प्रकार की बातों में विश्वास नहीं करते। वह अपरिचित है, उसे परदेसी के समान चलना है, वह उनके व्यवहार नहीं जानती, वे सब उसके लिए अपरिचित हैं। वह नहीं जानती है कि क्या करना है। यही है जो रूथ को करना था, यही है जो आपको करना है, यही है जो मुझे करना है। जब मैंने मसीह को स्वीकार किया, मुझे मेरे घर से निकाल दिया गया। जब मैंने मसीह को स्वीकार किया, मेरे लड़के मित्रों ने, महिला मित्रों ने, सब ने मुझे छोड़ दिया। पुराने लोगों के झुंड में चली गई, जिनके पास पवित्र आत्मा था और परमेश्वर पर विश्वास किया, उसकी सेवा की। यहाँ कलीसिया में जो लड़कियां हैं, ये उन लड़कियों से भिन्न हैं जिनके साथ मैं रहा करती थी। ये भिन्न दिखाई पड़ती हैं, वे भिन्न व्यवहार करती हैं, वे अपरिचित हैं और मैं उनसे भयभीत थी। वे भिन्न लोग थे। यही है जो रूथ को करना था। उसे अपनों में से निकलकर दूसरे लोगों में आना था। वह मत परिवर्तन थी। उसने एक निर्णय लिया था। और आप एक निर्णय लेते हैं, आपको अपनी ही पसंद लेनी है। आप संसार की चीजों में वापस चले जाना चाहते हैं या परमेश्वर के साथ जाना चाहते हैं? क्या आप संसार के समान व्यवहार करना चाहते हैं और उन बाकी लोगों के समान? तो फिर मसीह को चूमें, अलविदा कहें और वापस जाएं। परंतु यदि आप प्रभु के थोड़े से ठुकराए लोगों के साथ अपना मार्ग लेना चाहते हैं, तो परमेश्वर का न बदलने वाला हाथ पकड़ लें। चाहे बाकी का संसार जो भी कहता रहे, आप उसे पकड़े रहें। परमेश्वर ने ऐसा कहा है, यह सत्य है, मैं इसका विश्वास करता हूँ। यद्यपि मैं इसे अपने जीवन में प्रकट नहीं कर सकता, परमेश्वर ने ऐसा कहा है, मैं इसका विश्वास करता हूँ, मैं इसे वहाँ पकड़े हुए हूँ। उसने नियोमी के साथ यही किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं वहीं जाऊंगी जहाँ तू जाएगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे। जिस प्रकार वे व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार मैं व्यवहार करूंगी। जिस प्रकार से वे करते हैं, मैं यही करूंगी। जो वे खाते हैं, वही मैं खाऊंगी। जहाँ तू मरेगी, वहाँ मैं मरूंगी। जहाँ तू गड़ेगी, मैं गाड़ी जाऊंगी। और यदि मैं कभी ऐसा न कर पाऊँ, तो प्रभु मुझ पर इससे बढ़कर करे। यही वो सच्चा साफ निर्णय है। परमेश्वर उसकी कलीसिया से सच्चा साफ निर्णय चाहता है। अच्छा प्रभु, यदि आप मुझे आशीषित करेंगे और मेरे लिए यह करेंगे, तो मैं ऐसा और ऐसा करूंगा। यह कोई निर्णय नहीं है। परमेश्वर, मैं ये चिंता नहीं करता कि तू मेरे साथ क्या करेगा। कुछ भी हो, मैं जाऊंगा। यदि मैं मर जाऊं, कोई बात नहीं। मरूं या जीवित रहूं, जो भी है, यदि वे मुझ पर हंसे, मेरा उपहास उड़ाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी हो, मैं जाऊंगा। यह सच्चा साफ निर्णय है, जैसा रिबिका ने किया। इसके पहले कि वह इजाक को देखती, उसके माता पिता ने कहा, लड़की को उत्तर देने दो, लड़की समझदार है, उसे उत्तर देने दो। उसने कहा, मैं जाऊंगी। साफ साफ निर्णय जो तुरंत दिया गया, वह उसके साथ बनी रही। यही है जो रूथ ने किया। ओरपा वापस चली गई, वे यात्रा पर निकल गई। रूथ अपने हृदय में नहीं जानते हुए कि वो कहाँ जा रही थी, परंतु एक कलीसिया का नमूना है। हम अब्राहम के समान परदेसी हैं, अपरिचित देश में मुसाफिर, अपरिचित लोगों के मध्य में। और वह आगे बढ़ गई, और अतः वह उस कमरे में आई, उस स्थान में जहाँ नाओमी उसे लाई थी। और उसने क्या पाया? हर कोई उसकी पीठ थपथपा रहा था और कह रहा था, रूथ, तुम्हें हम यहाँ पाकर आनंदित हैं। उसने मतभेद पाया, उसने कुछ बुरा पाया, उसे परेशानी मिली। और प्रचारक जो आपको ये बताता है कि वो मसीह का जीवन फूलों की सेज है, या तो वह आपको धोखा दे रहा है, या उसे खुद कभी भी कोई अनुभव नहीं मिला। संसार आपसे घृणा करता है और लोग आपसे घृणा करते हैं। आपको प्रभु के लिए ठुकराए हुए कुछ लोगों के साथ मार्ग लेना होगा, और जिस पर हंसा गया हो, उपास उड़ाया गया हो, या जो कुछ भी है, आपको भिन्न होना होगा। आप दूसरे राष्ट्र में जन्मे हैं। मेरी पत्नी, जैसे कि मैं फिर से इसका उल्लेख करूंगा, ये करने में इतना भला प्रतीत होता है। मुझसे पूछा, ये मसीही स्त्रियां उन दूसरी स्त्रियों के समान कपड़े क्यों नहीं पहनती हैं? मैंने कहा, हम सब अमेरिकन हैं, क्या हम नहीं हैं? मैंने कहा, नहीं श्रीमान। अच्छा, तो हम क्या हैं? मैंने कहा, हम ना तो जर्मनी, फ्रांसीसी, बेल्जियमी, स्विस, अफ्रीकन या अमेरिकन हैं, या उनमें से कोई नहीं। परंतु हम क्या हैं? मैंने कहा, हम मसीही हैं, अमेरिकन अमेरिकनों के समान व्यवहार करते हैं, जर्मन जर्मनियों के समान व्यवहार करते हैं, क्योंकि यही उनकी राष्ट्रीय आत्मा है और हमारी भी एक राष्ट्रीय आत्मा है। यही पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर की ओर से आता है, स्वर्ग से, और आप उसके जैसा व्यवहार करते हैं, आपके आचरण को वैसा स्वयं बनाता है जैसा वे वहाँ थे, क्योंकि आप दूसरे संसार के हैं। यह सत्य है कि हम अमेरिका में वास कर रहे हैं, यह शारीरिक भाग है, परंतु वह प्राण जो हमें संचालित करता है, हमारा चरित्र, ये ऊपर से है। हम ऊपर से जीते हैं क्योंकि हम ऊपर से जन्मे हैं। सारे मसीही ऊपर से आए हैं। यीशु ने कहा, मैं नीचे से नहीं हूँ, मैं ऊपर से हूँ। यदि मैं धरती से होता तो मेरे लोग मेरे लिए लड़ते, परंतु मेरा राज्य ऊपर का है। इसी प्रकार से प्रत्येक मनुष्य जो स्वर्ग के राज्य से जन्मा है, वह ऊपर से है। अब ध्यान से देखते हैं, जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, हम उन्हें निराशा में आते हुए देखते हैं। क्या यही है जहां आप भीतर आते हैं, जब आप पवित्र आत्मा को पाते हैं? निश्चय ही हुआ है, मेरे साथ हुआ, उपहास उड़ाया गया और सब कुछ। तब ध्यान दें, जीवन उसके लिए कठिन था। जब आप मसीही हो जाते हैं तो यह आपके लिए कठिन हो जाता है, क्योंकि आपको एक जीवन से जो तड़क भड़क और संसार के आनंद का था, अपने आप को दूसरे जीवन में समायोजन करना होता है। परमेश्वर के लिए पवित्र, आपको स्वयं को इस और इसके अंदर समायोजित करना होता है। और रूथ को अपने आप को समायोजन करना था, क्योंकि उस देश में जहाँ खाने की बहुत आयत और हर चीज आदर युक्त थी, उन लोगों को जो हंस रहे थे, उसका उपहास उड़ा रहे थे, उस देश में उसे खेत में से सिला बीनना जो उसे खाना है, अपने कपड़े में समेट कर घर ले जाना है और तैयार करके कुछ रोटी बनानी है, और वो और उसकी सास इसे खाती है। जब वह वहाँ पर थी, उन्होंने पाया जब वह सिला बीन रही थी या बीनने जा रही थी। अब उसने अपना निर्णय लिया, यह उसका निर्णय था। अब अगली चीज उसे सेवा करनी थी, और यही है जो कलीसिया को करना है। कलीसिया, आपके निर्णय लेने के पश्चात आपको सेवा करनी है, परमेश्वर की योजना के अनुसार उसकी सेवा करनी है, उसकी मूल योजना के अनुसार आपको परमेश्वर की सेवा करनी है। रूथ निर्णय ले रही है, अब रूथ अपने निर्णय के अधीन सेवा कर रही है। अब एक मिनट ध्यान दे, अब वह सिला बीनने के लिए खेत में जाती है। अब उसकी माँ उसे बताती है, जो कि पुराना नियम नए को बता रहा है। आप जानते हैं, उसकी माँ ने उसे बताया, कहा, हमारा छुड़ाने वाला एक निकट कुटुंबी है और उसका नाम बोआज है। वह एक धनी व्यक्ति है और वह निकट छुड़ाने वाला कुटुंबी है। तू उसके खेत में जा, और संभव है दूसरे के खेत में न जाना, उसी के खेत में जाना। कैसे पवित्र आत्मा हमें बताता है कि किसी प्रकार की एक कलीसिया की पुस्तक, किसी प्रकार का मौलिक शिक्षा में न जाना, परंतु परमेश्वर के खेत में जाना, पुराना नियम बाइबल ना कहें, अच्छा हम यह कहेंगे और हम यह कहेंगे प्रार्थना के लिए, हमारे पास यह होगा, ठीक खेत में बने रहें, सीधे उसमें जाएं, क्योंकि वह निकट छुड़ाने वाला कुटुंबी है। परमेश्वर का वचन पुराना नियम नए नियम का निकट कुटुंबी है। पुरानी कलीसिया नई कलीसिया की माँ है। देखिए, एक मसीही, एक विश्वासी, किसी दूसरे खेत में न जाना, उसी के खेत में बने रहना, और संभव है किसी दिन तू उससे अनुग्रह पाए। और एक दिन जब वह खेत में थी, यह धनी युवक पुरुष जिसका नाम बोआज था, एक शासक धनी व्यक्ति ने आकर और उसे देखा। ओह, जब उसने उसे देखा तो उसे उसी स्त्री से प्रेम हो गया। उसने सोचा, यह कितनी भली स्त्री है। उसने उसके चरित्र को पसंद किया। स्मरण रखें, उसने कहा, मैं जानता हूँ, लोग जानते हैं कि तू एक सद्गुणी स्त्री है। उसने साफ साफ निर्णय लिया है, सीधी वापस आई ठीक वैसे ही जीवन बिताया जैसा उसने कहा वो वैसा ही करेगी। नहीं तो आज वे कहते हैं, हम जानते हैं कि तू एक मसीही है, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर का जन है, क्योंकि कोई मनुष्य इन आश्चर्य कर्मों को नहीं कर सकता जब तक कि परमेश्वर उसके साथ ना हो। यही बात निकोदिमस ने यीशु से कहा, कहा रबी हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, कोई मनुष्य इन कार्यों को नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर उसके साथ ना हो। जब वह उसे वहाँ बैठा हुआ देखता है और उसके हृदय के विचारों को परखता है, स्त्री ने उसका कपड़ा छुआ, उसने घूमकर कहा किसने मुझे छुआ, उन सब ने इसका इनकार किया। वहाँ पीछे श्रोतागण में देखकर और कहा तू जिसे लहू बहने का रोग था तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। कहा कोई मनुष्य यह नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर उसके संग न हो। हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है, हम तुझे स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि हम कलीसिया से निकाल दिए जाएंगे। समझे भाई वेस्ट, वह साटी हुई दाखलता जैसे कि हम पिछली रात्रि बात कर रहे थे, वे आपको बाहर निकाल देंगे, परंतु हृदय के भीतर हम जानते हैं कि तू मूल दाखलता से आया है, मसीह दाखलता है, हम डालियां हैं, हम जानते हैं क्योंकि हम देखते हैं वही जीवन जो परमेश्वर में है वह तुझ में है। यही है जो बोआज ने कहा, रूथ के अंदर देखा वह साफ स्पष्ट निर्णय वह गुण संपन्न स्त्री वहाँ खड़ी है और उसे उस महिला के साथ प्रेम हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें, नियोमी पुरानी कलीसिया, उसने रूथ को अपने धर्म के सारे नियम खोलकर बताना आरंभ कर दिया, जैसे कि पुराना नियम नए नियम की प्रतिछाया है। अब मैं चाहता हूँ कि आप इस कहानी को यहाँ ले लें। अब उन छाया को दिखाना चाहता हूँ, पुराना नियम नए नियम को व्याख्या देता है, यदि केवल आप इसे पढ़ेंगे, क्योंकि यह नए की आने वाली छाया है। अब यदि मैं उस दीवार की ओर जाऊंगा, मैंने स्वयं को कभी नहीं देखा और मैं अपनी परछाई देखता हूँ, तो मैं जान जाऊंगा, कुछ धारणा बनेगी कि मैं कैसा दिखाई पड़ता हूँ। यदि आप नहीं जानते आप कि नया नियम क्या है, तो पुराना नियम पढ़ें और आप इसकी परछाई देखेंगे, समझे। और तब जब नया नियम सामने आता है आप कहते हैं क्यों, निश्चय ही यह यही है। इब्रानियों की पुस्तक वापस जा रही है, पौलुस इसकी व्याख्या दे रहा है। अब इस पर ध्यान दे, जब रूथ ने कहा, यानी नियोमी ने रूथ से कहा, कहा अब यह हमारा निकट कुटुंबी है और यदि तू इससे अनुग्रह पा सकती है तो तू विश्राम पाएगी। ओह प्रभु, यदि तू अनुग्रह पा सकती है तो तू विश्राम पाएगी। बोआज मसीह का प्रतिनिधित्व करता है, धनी मनुष्य, सब वस्तुओं का उत्तराधिकारी, कटनी का स्वामी। ओह प्रभु, कैसे जब बोआज वहाँ उस बग्गी पर सवार होकर आया, चारों ओर अपने खेतों पर दृष्टि डाली और उसकी दृष्टि रूथ पर पड़ी, वह स्वामी था, वह सारी कटाई का स्वामी था और उसकी दृष्टि में उसने अनुग्रह पाया। यही है जो कलीसिया ने आज किया है, जबकि उसकी कटाई का स्वामी पास से निकल रहा है, वह किसी बड़े भवन की ओर नहीं देख रहा, ऊंची मीनार, अच्छी प्रशिक्षित गायन मंडली, वो पुरुषों और स्त्रियों को व्यक्तिगत रूप से देख रहा है जो कि मसीह के लिए समर्पित और एक साफ स्पष्ट है, उसकी सेवा के लिए स्वयं को पवित्र किया है। परमेश्वर, मैं इसका विश्वास करता हूँ, इसके प्रत्येक वचन का। जब आपका वचन कुछ बात कहता है, मैं ठीक उसके साथ बना रहता हूँ, यही आपका वचन है, मैं इसका विश्वास करता हूँ, प्रत्येक वचन का। यही है जो वो ढूंढ रहा है, कटाई का स्वामी, यही है जो वो देना चाहता है, वो पवित्र आत्मा उन लोगों को जो भूखे और प्यासे हैं। धन्य है वे जो भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि तुम तृप्त किए जाओगे। आज वह उसी कलीसिया को खोजने का यत्न कर रहा है। अब तब रूथ से कुछ करने को कहा गया जो अशोभनीय था, परंतु वह तैयार थी क्योंकि उसने अपना निर्णय लिया था। किस प्रकार का विश्वासी, क्या ही सिद्ध नमूना है। नियोमी पुरानी कलीसिया ने कहा आज रात्रि वहाँ जा, यह जौ का ऋतु है। ओह क्या ही सुंदर विचार जिस पर हम यहाँ बने रह सकते हैं। नियोमी और रूथ जौ के ऋतु में आई थी। जौ की ऋतु रोटी का समय था, वह समय अवधि जब ताजी रोटी पड़ोसी गई है, और कलीसिया इस अंत के दिनों में पगान के 2000 वर्षों की शिक्षा और इत्यादि से निकलते हुए इस जौ के ऋतु में भीतर आती है और जीवन की ताजगी, नई रोटी, स्वर्ग से मधु, रुसेल मधु की रोटी के विषय में बात करता है। यही है स्वर्ग से रोटी, जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे पूर्वजों ने मन्ना खाया और मर गए, परंतु मैं जीवन की रोटी हूँ जो परमेश्वर के पास से आई है, स्वर्ग से। यदि मनुष्य इस रोटी में से खाएगा तो वह कभी नहीं मरेगा। और कलीसिया इन अंत के दिनों में भीतर लाई गई है, अब ठीक जौ के समय में। रूत एक अन्य जाति निकाली हुई, भागी हुई, भीतर लाई गई ताकि दुल्हन के समान स्वीकार की जाए। मसीह जौ की ऋतु में भीतर आया। उसने कहा, अब तेरा कपड़ा तुझ पर ढका रहे, ना कि अपने कपड़े उतार देना। आज से कितना विपरीत है, जब तू उससे मिलने को जाए तो अपने कपड़े बांधे रखना। आज रात्रि वह जौ फटकने जा रहा है, जाकर और अपना कपड़ा अपने ऊपर रखना, उससे मिलने के लिए स्वयं को ढाक कर रखना। आज वे अपने आप को उघाड़ना चाहते हैं, स्वयं को ढाकें, वहाँ जा, क्योंकि वह जौ बरसा रहा है। और तब उस स्थान को चिन्ह लेना जहाँ वह लेटा है। क्या आपने यह किया है? गुलगुत्ता पर बहुत वर्षों पहले मैंने अपने हृदय में चिन्हित कर लिया कि उसने अपना जीवन कहाँ दिया था ताकि वह मुझे ले ले। उस स्थान को जहाँ वह लेटता है चिन्ह ले, देखो जहाँ वह लेटता है। यही है जो हर विश्वासी को करना चाहिए, चिन्हित कर ले कि उसने आपके लिए क्या किया है। पिछले रविवार का संदेश, कलवरी की ओर जाना, चिन्हित करें कि उसने आपके लिए क्या किया है। उसने कहा, जहाँ वह लेटता है चिन्ह ले। जब वह सोने के लिए लेटता है विश्राम के लिए, तू जाकर उसके पैरों के पास लेट जाना, उसके सिर पर नहीं, उसके पैरों पर, अयोग्य। और वह कंबल लेना जिसे उसने ओढ़ा हुआ है, और खींचकर अपने ऊपर कर लेना। ओह, आप देखते हैं, ओह प्रभु, मैं जानता हूँ आप सोचते हैं कि मैं एक कट्टरपंथी हूँ, परंतु यह मुझे सही लगता है। वह परमेश्वर का आत्मा, चिन्ह ले। वह कलवरी पर कहाँ लेटा? वहाँ जहाँ कब्र में रखा गया, गतस्मनी में। चिन्ह ले और उसके पैरों की ओर खसक जा, वहाँ लेट और मर जा। स्वयं से आप उसी स्थिति में हैं, स्वयं को उसके वस्त्र से ढाप लें। उसने कहा, पल्ला, उसने इसे कहा। और रूत ने कहा, जो तू कहेगी मैं वह करूंगी। ओह, विश्वासी के लिए कितना साफ स्पष्ट निर्णय है। बाइबल क्या कहती है? मैं वही करूंगा, कहती है, प्रायश्चित कर और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, मैं यह करूंगा। यदि यह कहता है सारे संसार में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो, मैं यह करूंगा। यदि यह कहती है, यह जो भी कहेगी, यीशु मसीह कल आज और सर्वदा एक सा है, यह जो मुझे करने के लिए कहेगी मैं करूंगा। देखिए, कलीसिया अपना निर्देश वचन से लेती है, वह लेट गई। अब स्मरण रखें, यह बात इस जवान विधवा के लिए अशोभनीय थी कि इस पुरुष के पैरों के पास जाकर लेटे, एक कलंक बाहर के संसार के लिए। ओह, क्या आप इसका पक्ष लेते हैं? यह यहाँ पर है, देखिए, देखिए, यही है वह कलीसिया। युवा महिला, नवयुवक, बूढ़ा या युवा, उससे कहा गया है कि स्वयं को संसार से अलग कर ले और एक स्थान में आ जाए, पवित्र आत्मा का राज्य। यह संसार के लिए कलंक है। अपने हृदय में वे जानते हैं यह सब किस विषय में है, परंतु संसार के लिए वे कट्टरपंथी हो जाते हैं, वे पवित्र शोर मचाने वाले हो जाते हैं, या कुछ तो इन्हीं विचारों पर, कोई कलंकित नाम। परंतु कलीसिया से यह करने के लिए कहा गया, क्या आप उस स्थान को चिन्हित करने की इच्छा रखते हैं और लेटने की? संसार जो चाहे उसे कहने दो। पुराना गीत गाया करते थे, मैंने यीशु के साथ अकेले चलना आरम्भ किया, देखा, याकूब के समान पत्थर का तकिया पाऊं और प्रभु के लिए ठुकराए थोड़े लोगों के संग अपना मार्ग लूंगा। मैंने यीशु के साथ आरंभ कर दिया, मैं उसमें से होकर निकल रहा हूं। यही है कोई मतलब नहीं, मैं इसका मूल्य चुकाऊंगा। दूसरे जो भी करें, यदि इसका अर्थ कलंक है, यदि इसका अर्थ घर को खोना है, परिवार को खोना है, आपके सारे संबंधी, महिला मित्र, लड़के मित्र, इसका जो भी अर्थ है, मैं अकेला जाऊंगा, मैं मार्ग अपनाऊंगा। यदि मेरा पड़ोसी कहता है कि मैं एक पवित्र शोर करने वाला हूँ, एक पेंटिकॉस्टल या एक कट्टरपंथी हूँ, मैं चिंता नहीं करता कि दूसरे क्या कहते हैं, मुझे इस बात से जरा भी अंतर नहीं पड़ता। मैं इसे आरंभ कर चुका हूँ, मैंने अपना निर्णय स्पष्ट कर लिया है और मैं उसमें से होकर जा रहा हूँ। अब केवल वही एक था जो उसको विश्राम दे सकता था, उस सिला बिनने को थका देने वाले खेतों से। ओह, ये इतना मधुर था। जब बोआज, जब उसने उसे खेत में पाया, मैं इसे नहीं चूक सकता हूँ। बोआज ने उसे बाहर खेत में पाया, उसने कहा, देखो, उसने कहा, तू कौन है? कहा, मेरा नाम रूथ है। ओह, वह मुआबनी जो हमारे पास परदेसी होकर आई है। हाँ, मैंने तेरे विषय में सुना है, तू दूसरों के खेत में न जाना। ओह, मुझे ये पसंद है। मिशन की दुल की चाल आरंभ न करना, ठीक मेरे ही खेत में बने रहना, मेरे साथ बनी रहना। उसने उससे प्रेम किया, यहीं रुक, मेरे साथ रुक, यहाँ आसपास जगह जगह मत घूम, यहीं रहे। यदि आप संदेश का विश्वास करते हैं तो इसी पर बने रहें, समझे? कोई मतलब नहीं क्या दाम है, ठीक इसी के साथ बने रहें, इसी पर चलते रहें। यदि इसका अर्थ इसका उसका या दूसरी बातों का बलिदान करना है और मुझे अपना पीना छोड़ना होगा, अपनी चोरी और झूठ बोलना छोड़ना होगा, मैं ठीक इसके साथ बना रहना चाहता हूँ, समझे? और उसने फिर से कहा, उसने कहा, अब ये तुझे परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि नौजवानों को मैंने आज्ञा दी है कि तुझे अपमानित ना करें। आमीन, मुझे ये पसंद है, उसकी सुरक्षा। ये किसने कहा? कटाई के स्वामी ने। सावधान रहो, मेरे अभिषिक्त को ना छूना, मेरे भविष्यवक्ताओं की हानि ना करना, क्या यह ठीक है? क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम्हारे लिए ये अच्छा हो कि चक्की का पार्ट तुम्हारे गले में टांग दिया जाए और समुद्र में डाल दिया जाए, जो मेरे इन छोटे से छोटे को ठोकर खिलाए। ये ठीक है, इन्हें ठोकर भी ना खिलाना। मैंने उन्हें आज्ञा दी है कि तुझे ना छुए। ओह, इस संसार को देखें, यह सताने वाला है, उनका समय आ रहा है। तब वह युवा मनुष्यों के पास गया, दूसरे, उसने कहा, यह जीवन के लिए सिला बीन रही है, अब मैं तुम कटाई वालों से चाहता हूँ कि तुम दूतो, दूसरे शब्दों में यही तो वे हैं, कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम दूतो, तुम कटाई करने वालों, प्रत्येक एक एक बार मुट्ठी भर जान मुझ कर छोड़ दो। ओह, उसके लिए यह सब थका देने वाला ना हो, परंतु प्रत्येक एक एक बार उसे अच्छा संदेश सुनने दो, पवित्र आत्मा की अच्छी सामर्थ उसे ढाके रहे, एक बार उसे मालूम होने दे कि मैं अब भी वहीं पर हूँ। उसके मध्य में किसी प्रकार की चंगाई को करो, या एक प्रकार के चिन्ह या एक आश्चर्य कर्म को, ताकि वह जान सके कि मैं उसके मध्य में हूँ, यही है। क्या आप उन थोड़े को ढूंढना पसंद नहीं करोगे? मैं आशा करता हूँ इस प्रातः कुछ को पाऊंगा, क्या आप नहीं? मुट्ठी भर ताजा जौ, प्रभु कुछ करता है जो वह किया करता था, कुछ ऐसा जो हम जानते हैं कि वह करता है, वह कटाई का स्वामी है, केवल वही है जो मुट्ठी भर छोड़ सकता है। मैंने दूतों को आज्ञा दी है कि इस प्रातः उस आराधना सभा में जाओ, मैं चाहता हूँ कि वे कुछ निश्चित निश्चित चीजें करें, मैंने उन्हें आज्ञा दी है और वे करेंगे। ओह प्रभु, अब यहाँ उसे अशोभनीय भाग लेना था कि लेटे, वह चाहे जो भी कहलाए, आप जानते हैं वह वैश्या कहलाई जा सकती थी, वह एक अपमानित महिला कहलाई जा सकती थी, तो भी वह थी नहीं, और उसने ठीक उन्हीं नियमों का पालन किया जो उसे दिए गए, इसलिए वो जाकर स्वयं को ढाक लेती है उस ओढ़ने से जो उसने ओढ़ कर रखा था। वह कहाँ जाएगी? कब्र पर। कहाँ जाएगी? जहाँ वो विश्राम कर रहा था, वहीं जहाँ मैंने उसे पाया, क्रूस पर, वहाँ जहाँ मेरा बचाने वाला मरा, वहाँ जहाँ पाप से धुलने के लिए मैं वहाँ रोया, वहाँ मेरे हृदय पर लहू लगाया गया, वहाँ एक चश्मा लहू से भरा हुआ इमैनुअल की शिराओं से निकलता है, जहाँ पापी उस बहाव में डुबकी लगाते हैं और अपने अपराधों के दागों को धो लेते हैं। उस स्थान को चिन्हित कर लो जहाँ वो लेटा, वहाँ उसके साथ लेट जाओ। क्या आप कलवरी पर जाने के लिए तैयार हैं? इस प्रातः जैसे कि मैंने पिछले रविवार कहा था, क्या आपने अपने जीवन में उस स्थान को चिन्हित कर लिया है? क्या आप स्वयं को उस स्थान पर ले आए हैं जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था? ओह, हम इसकी सराहना करते हैं, परंतु आपके क्रूस पर चढ़ने के विषय में क्या है? क्या आप उस अशोभनीय नाम के साथ मार्ग को तैयार हैं, जैसे कि एक पवित्र शोर करने वाले, एक हठधर्मी या जो भी नाम हो, जो भी दाम चुकाना पड़े? क्या आपने उस स्थान को चिन्हित कर लिया है ताकि आप वहां जाकर और उसके संग लेट कर कहें, प्रभु मैं यहां पर हूं? फिर क्या उसी ओढ़ने को अपने ऊपर खींच लें जो उस पर था? एक स्त्री ने हमारे प्रभु से कहा, प्रभु मेरे दो पुत्रों को ये प्रदान करें कि तेरे राज्य में एक तेरे दाहिनी हाथ और बाएं हाथ पर बैठे। उसने कहा, क्या तुम वही प्याला पी सकते हो जो मैं पीता हूँ? यह कड़वा अनुभव है। हाँ, क्या तुम भी वही बपतिस्मा ले सकते हो जो बपतिस्मा मैंने लिया है? लेट जाओ, उस पर वही ओढ़ना ओढ़ा दो। एलिया उठा लिया गया था, एलिया ने वही ओढ़ने को नीचे फेंका जो उस पर था कि एलिशा को उसकी आत्मा के दुगने भाग के साथ ढाक दे। वही चीज, केवल दुगना भाग, वही सामर्थ और कुछ अधिक नहीं, कुछ अधिक नहीं, कोई बढ़कर नहीं, केवल इसका दुगना भाग। जैसे मूसा जब वो थक गया था तो उसके ससुर ने उससे कहा तू स्वयं को थका रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना कर कि तेरे आत्मा को लेगा और इसे दूसरों पर डाले। और उसने प्रार्थना की और उसने आत्मा को लिया और उसे दूसरे 70 पर डाला और 70 भविष्यवाणी करने लगे। उनके पास कोई और अधिक सामर्थ्य ना थी, उनके पास अधिक यांत्रिकी थी, बस यही है, वही चीज थी, केवल अधिक यांत्रिकी थी। आज भी ऐसा ही है, एक मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। परमेश्वर की यांत्रिकी हर स्थान पर कार्य कर रही है, परंतु यह वही सामर्थ्य है, वही पवित्र आत्मा, वही यीशु। अब कंबल को लिया, पवित्र आत्मा जब वह स्वयं में मर गई, उस स्थान को चिन्हित किया जहां वह मरा, जहां वह विश्राम के लिए लेटा, तब वह लेट गई और उस कंबल को लिया जो उस पर था, उसे अपने ऊपर खींच लिया। और मनुष्य जाग उठा, बोला, कौन है? उसने कहा मैं रूत हूँ, मुआबनी, तेरी दासी। वह उठ गया और बोला, मुझे प्रतीत होता है और जानता हूँ कि तू एक सद्गुणी स्त्री है। आमीन। ओह, क्या यह आपके प्राणों में कब कभी उत्पन्न नहीं करता? तू एक सद्गुणी स्त्री है। और रूत ने क्या उत्तर दिया? परंतु तू तो निकट का कुटुंबी है। आमीन। परंतु तू तो निकट का कुटुंबी है, तू मेरे लिए कर सकता है, तू मुझे विश्राम दे सकता है। मैं यहाँ आ गई हूँ और लेट गई हूँ चरित्रहीन स्त्री के लिए नहीं, मैं यहाँ दिखावे के लिए नहीं लेटी हुई हूँ, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं अन्य भाषा में बोल सकती हूँ, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं आत्मा में नाच सकती हूँ, और लोगों को दिखाने के लिए कि मैं चिल्ला सकती हूँ, परंतु मैं यहाँ आई हूँ कि तू एक निकट कुटुंबी है, यह दिखाने के लिए नहीं कि मैं कुछ बड़ा कर सकती हूँ, परंतु तू मेरा रिश्तेदार है, मैं आई हूँ क्योंकि तू मेरा निकट कुटुंबी है, और केवल तू ही एक है जो मुझे छुड़ा सकता है। मसीह में उस मत परिवर्तित आचार व्यवहार को देखिए कलीसिया के लिए, समझे, तू मेरा निकट कुटुंबी है। और उसने कहा, तू एक सद्गुणी स्त्री है और मैं तेरा निकट कुटुंबी हूँ, अब अपने आप को ढाप ले और भोर तक लेटी रहे। इस कंबल से स्वयं को ढाक ले, मैं तेरा निकट परिवार का सदस्य हूँ, भोर तक यही लेटी रहे, विश्राम कर। आमीन, आमीन, मैं तेरा निकट कुटुंबी हूँ, विश्राम कर। आमीन। जब भोर हुई, पौ फटने से पहले उसने जौ का एक बड़ा भाग एकत्र किया, 6 नपुए, मैं विश्वास करता हूँ यही था, इसे उसके छोटी सी दुशाला में डाला और वह घर चली गई। और नियोमी ने कहा, मेरी पुत्री आपके वेदी पर से उठकर और चले जाने के पश्चात, माँ अब क्या होने जा रहा है, अब क्या बात जगह लेने जा रही है? आमीन, विश्राम। आमीन। रूत, तू विश्राम कर, क्योंकि उस मनुष्य को तब तक विश्राम न मिलेगा जब तक वह छुटकारे का पूरा मूल्य का भुगतान न कर दे। आमीन। आमीन, ठीक वही जहाँ मैं खड़ा हूँ, आमीन। वह तब तक विश्राम न करेगा जब तक वह छुटकारे का पूरा दाम न चुकता कर दे तुम्हें छुड़ाने के लिए। हर चीज जो आपने कभी खोई है, हर चीज जो आपके पास थी, अब छुड़ाने के नियम को स्मरण रखें। जैसे कि हम समीप आ रहे हैं सभा के अंत में, छुड़ाने की सारी व्यवस्था यह है, इसके पहले कि कोई व्यक्ति खोई हुई संपत्ति छुड़ाए, उसे सबसे निकट कुटुंबी होना है, और अगली बात वह एक खरा व्यक्ति होना चाहिए, एक सज्जन पुरुष इसे करने के लिए, और उसके पास पर्याप्त पैसा होना चाहिए कि यह करे, और तब उसे एक खुली गवाही देनी होगी कि उसने यह किया है, और तब उसके पश्चात यह उसकी संपत्ति है। इसलिए अब देखिए, बोआज मसीह को दर्शाता है, अब रूथ कलीसिया का प्रतिनिधित्व करती है, आप विश्वासी, और अब परमेश्वर पुराने नियम में केवल एक ही मार्ग था कि वह आकर जो खोया था छुड़ा सके। परमेश्वर को मनुष्य का निकट संबंधी बनकर आना था, केवल एक ही तरीका है कि वह मनुष्य का निकट कुटुंबी बनकर आए, उनमें से एक हो जाए, आमीन। मैं बिली ग्राहम के साथ सहमत नहीं हूँ कि परमेश्वरत्व में तीन व्यक्तिगत व्यक्ति हैं, या किसी भी त्रिएकता वाले शिक्षक से इस बात पर। मैं त्रिएकता में विश्वास करता हूँ, परंतु इस रीति से नहीं कि वे तीन व्यक्ति हैं, वह एक है। उस कहानी में अकेले इसके अलावा और कुछ नहीं था, यह साबित होगा। परमेश्वर मनुष्य बन गया, उसे निकट कुटुंबी बनना था, और वह परमेश्वर नहीं हो सकता था, और हम पापी लोग उसकी सृष्टि की रचना थे, उसकी सृष्टि के जीवन, क्योंकि हम वहाँ के निकट कुटुंबी नहीं हो सकते, इसलिए परमेश्वर मनुष्य बन गया ताकि मनुष्य परमेश्वर हो सके, परमेश्वर हो जाए, आमीन। हम पापी मनुष्य होने के नाते परमेश्वर एक पापी बन गया, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, पापों को ना जानते हुए तो भी एक पापी था, क्योंकि हमारे पाप उस पर रखे गए थे, ताकि हम वह मैं बन गया ताकि मैं वह बन जाऊं, समझे, वह एक पापी बन गया ताकि मैं एक परमेश्वर का पुत्र हो जाऊं, वह एक पापी बन गया ताकि आप परमेश्वर के पुत्र हो जाएं, और अब हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा निकट कुटुंबी हो गया था जब उसने हमारा शरीर धारण किया और स्त्री से जन्मा। परमेश्वर दूसरा व्यक्ति नहीं, परमेश्वर स्वयं, पहला तीमुथियुस 3:16 में कहा, और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद महान है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ था, परमेश्वर। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ, वचन मनुष्य बन गया, निकट कुटुंबी हो गया, वह एक मनुष्य बन गया, ओह वह मृत्यु बन गया ताकि उसकी मृत्यु में से होते हुए मैं जीवन बन सकूं, वो एक पापी बन गया कि उसकी धार्मिकता में से होते हुए मैं जीवन को पा सकूं, वह कंगाल हो गया ताकि उसकी कंगाली में से मैं धनी हो सकूं, वह जो मैं था वह बन गया ताकि मैं उसके अनुग्रह से वह बन सकूं जो वह है। ओ प्रभु, तब परमेश्वर की सामर्थ्य के विषय में बातें करते हैं, अब बिल्कुल ठीक यही वचन है और यही है जो वचन ने कहा है, ताकि हम हो सके। प्रेम क्या है? पिता ने हम पर अपना साया किया, हम पर छाया की, ताकि हम जो पापी थे, अलग किए हुए परमेश्वर से दूर, परमेश्वर के समीप लाए जा सकें, इतना हो कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन जाएं, ना कि दास। अन्य जाति कलीसिया कभी भी दास नहीं है, नहीं श्रीमान, अन्य जाति कलीसिया पुत्र और पुत्रियां हैं, आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा प्राप्त किया है। अब क्या आप ओरपा के झुंड हैं और लौट गए? परंतु यदि आप पवित्र आत्मा में से होकर आगे निकले हैं तो आप पुत्र और पुत्रियां हो गए। अब पुत्र और पुत्रियां किसके पास परमेश्वर के सम्मुख शक्ति है? दूत क्या है? एक दूत एक सेवक होता है, यह ठीक बात है, वे उसके दास हैं। आप क्या है? उसके पुत्र और पुत्री। उसे छोड़ स्वर्ग में किसके पास सामर्थ है? एक पापी जो अनुग्रह से बचाया गया है, या एक प्रधान दूत जो उसके दाहिने ओर खड़ा है? वह पापी जो अनुग्रह के द्वारा बचाया गया है, उसके पास अधिक अधिकार होता है प्रधान दूत की तुलना में जो उसके बराबर बिना पाप के खड़ा है, क्योंकि वह एक पुत्र है। पुत्र के पास सेवक से अधिक अधिकार होता है, यह ठीक बात है। ओह हम भूल गए कि हम क्या है। बहुत बार हम भूल गए हमें किसने बनाया, हम क्या हैं, जो हम हैं। यह हो जाने के बाद तब हम भूल गए कि हम यहाँ कैसे आए। जब परमेश्वर ने स्वयं से ओ पिता का कितना बहुमूल्य प्रेम आदम की गिरी हुई जाति को दिया, अपना इकलौता पुत्र दुख सहने को दिया और हमें अपने अनुग्रह से छुड़ाया। ओह कैसे हम कभी भी जान सकते थे। बीच से फटी चट्टाने और अंधकार भरे आकाश, मेरे बचाने वाले ने अपना सिर झुकाया और मर गया। खुले हुए पर्दे ने मार्ग को प्रकट किया, उस स्वर्ग का आनंद और ना समाप्त होने वाला दिन। मसीह पर जो ठोस चट्टान है मैं खड़ा हूँ, बाकी सारी धरती धस्ती वाली रेत है। जब मैं अद्भुत क्रूस को गौर से देखता हूँ, जहाँ महिमा का राजकुमार मरा, मैं अपने सभी पापों को केवल हानि ही मानता हूँ। यह ठीक बात है, एक ने कहा, जीते हुए उसने मुझसे प्रेम किया, मरते हुए उसने मुझे बचाया। गाड़ा गया वह मेरे पापों को दूर ले गया, जी उठते हुए उसने सदा के लिए धर्मी ठहराया। किसी दिन वो आ रहा है, ओह महिमामय दिन। यही कलीसिया का विषय रहा है, यही उसका दृष्टिकोण रहा है, यही इसका हृदय रहा है। यह पृथ्वी इस निकट छुड़ाने वाले कुटुंबी के लहू से नहाई हुई है कि आदम की गिरी हुई जाति को छुड़ाए। ध्यान दें, वो यहाँ है, एक छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी। अब पहली बात, उसे एक योग्य मनुष्य होना चाहिए। मसीह से कौन अधिक योग्य होगा? यीशु से। तब दूसरी बात, उसके पास पैसा होना चाहिए, वो इसे कर सकने के योग्य होना चाहिए। उसने स्वर्गों का अधिकार लिया, उसने सिद्ध कर दिया कि ये उसने किया है। वह 5 रोटी और 2 मछली लेकर 5,000 को खिला सकता है। उसके पश्चात बचे हुए टुकड़ों के 5 टोकरे उठाए गए। वह कुएं से पानी निकालकर और उसे दाखरस में बदल सकता है। वह समुन्द्र में से मछली लेकर उसके मुख से सिक्का ले सकता है सोने का। आमीन। वह एक नहीं था, परंतु वह निर्धन बन गया। अपना सिर रखने के लिए स्थान नहीं था, वो निकट कुटुंबी बन गया। धनी लोगों का निकट कुटुंबी नहीं, सब लोगों का निकट कुटुंबी। उसने एक छुड़ाने वाले का स्थान लिया। तब उसे क्या करना था? तब उसे जनता के सम्मुख गवाही देनी थी। अगली प्रातः रूत ने कहा, यानी नियोमी ने कहा, रूत विश्राम कर, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि तूने उसकी दृष्टि में अनुग्रह पाया है। परमेश्वर मुझे यह करने दे, मुझे उसकी दृष्टि में अनुग्रह प्राप्त हो। तब जब भोर हुई, जब प्रभु की तुरही फूकी जाएगी और समय और ना होगा, और भोर होती है अनंत चमकदार और साफ, और सब बचाए हुए इस धरती के दूसरे किनारे पर एकत्र होंगे, जब वहाँ उस ओर सारे नाम पुकारे जाएंगे, मैं वहाँ होऊंगा। अब विश्राम कर, पूर्ण छुटकारे की प्रतीक्षा हो रही है। ध्यान दें, मेरे पास ये है, अब उसका बयाना। मैंने पूरा दुशाला जौ से भर लिया और घर जा रहा हूँ। मैं वहाँ पहुँचा, उसने ये उसे दिया, पूरे 6 नपुए नाप लिए। 6 का अर्थ संसार के अस्तित्व के 6,000 वर्ष, मनुष्य के दिन 6 हैं। मनुष्य की रचना 6वें दिन हुई। 6,000 वर्षों में संसार की रचना हुई थी, 7वें में परमेश्वर ने विश्राम किया। 6,000 वर्ष तक कलीसिया पाप के बदले परिश्रम करेगी परमेश्वर की सामर्थ के साथ इस जौ की रोटी की, और तब अनंत विश्राम में जाएगी। ठीक है, विश्राम प्रतीक्षा। जौ के 6 नपुए उसने उसे दिए ताकि उसे संपूर्ण छुटकारे के होने के समय तक ले जाए। इसमें आनंद लेकर मैं अति प्रसन्न हूँ। अब आइए हम जल्दी से इसके अंत में पहुँचेंगे। अब हम पाते हैं कि अगली प्रातः जब वह सोकर जागी, वह आनंदित थी, प्रतीक्षा में थी, और वह व्यक्ति आया। वह नीचे गया, वहाँ एक और व्यक्ति निकट कुटुम्बी था, जिसे पहले स्त्री को छुड़ा लेने का वास्तविक विकल्प था। इसे लेने के लिए क्या मेरे पास समय है? अच्छा, अब 1 मिनट और हम इसके भाग को लेंगे, जो भी है। अब अगला वाला दृष्टांत में है, उसके पास आपके लिए विकल्प था। वो शैतान है, क्योंकि आपने पाप किया था, और पहले आप उससे संबंधित हैं, क्योंकि आप उसकी एक संपत्ति के समान हैं। क्योंकि आप पाप में उत्पन्न हुए और अधर्म में आकार लिया, संसार में झूठ बोलते हुए आए, और वो इसे छुड़ा ना सका। देखा, वो इसे ना छुड़ा सका, इसलिए मसीह आया और मनुष्य बना कि हमारे पापों को दूर ले जाए। हमें छुड़ाने के लिए, क्या आप यह देख सकते हैं? और दूसरा व्यक्ति यह नहीं कर सका। शैतान पापों के लिए ना मर सका, क्योंकि दूषित करने वाला वही था जिसने पाप बनाया, समझे? वह नहीं कर सका, वह उसके उत्तराधिकार को बिगाड़ देगा दूसरा व्यक्ति, और दुष्ट उसको बिगाड़ देगा, क्योंकि वो एक शैतान है। वो दूसरा शैतान न बन सका कि उस पहले वाले शैतान को ले जाए, वह पाप न बन सका क्योंकि वो पहले ही पाप था, परंतु मसीह पाप रहित होने पर भी एक पापी बन गया, वह हमें छुड़ा सकता था। हालेलुया, हम छुड़ाए हुए हैं। हम छुड़ाए हुए हैं का अर्थ है वापस ले आना। हम छुड़ाए हुए हैं, इसलिए अगली प्रातः तब उसे लोगों में गवाही देनी थी, वो वहाँ पर गया और इस पुरुष से फाटक पर मिला प्राचीनों के सामने, और ये आम लोगों का स्थान होना था, और उसने उसके मुख की ओर ताका। उसने कहा, क्या तू उस स्त्री को छुड़ा सकता है? अब यदि उसे पहले नियोमी को छुड़ाना था ताकि रूथ को पा सके, और मसीह को पहले यहूदी कलीसिया को छुड़ाना था ताकि अन्य जाति दुल्हन को पा सके, वो नियोमी के साथ एक परदेसी के समान भीतर आई और दूसरे देश से एक मुआबिन मूर्ति पूजक, यही है जो हम लोग थे, अन्य जाति, एक मूर्ति पूजक। और स्मरण रखें, उसे नियोमी को लेना ही था, और जब उसने नियोमी को लिया तो उसे वह सब मिला जो नियोमी का था। स्मरण रखें, जब मसीह आया तो उसने अन्य जाति कलीसिया के लिए कभी कुछ नहीं कहा, ऐसा था वह अपनों में गया, वह अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, वह सदा अपनों के लिए था। अन्य जातियों के पास न जाना, सामरियों के पास न जाना, परंतु इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। और जब तुम जाते हो तो सुसमाचार प्रचार करो, बीमारों को चंगा करो, मुर्दे जिलाओ, प्रेत आत्माओं को निकालो। तुमने जैसे मुफ्त पाया मुफ्त दो, क्या ये ठीक बात है? उन्हें दो दो करके भेजा, पहले जाओ। और उसे उस कलीसिया को छुड़ाना था, और जब उसने उस कलीसिया को छुड़ाया तो उसे अन्य जाति की दुल्हन मिली। आमीन, इसमें यही सौदेबाजी थी, समझे? जब उसने कलीसिया को छुड़ाया तो उसे दुल्हन मिली। अब बोआज को लोगों को गवाही देनी थी, उसने कहा, क्या तुम उसे छुड़ा सकते हो? उसने कहा, नहीं। तब उसे लोगों में गवाही देनी थी, उसने अपना जूता निकाला और उसकी ओर फेंका, कहा, तू ये रहा। सारा इसराइल ये जान ले कि मैंने नियोमी को छुड़ा लिया है और मैंने रूथ को भी ले लिया है। आमीन। रूथ को मैं अपनी दुल्हन होने के लिए लेता हूँ, यह कौन था? कटाई का स्वामी। आमीन। रूथ वहाँ है, मैं नियोमी को छुड़ाता हूँ और मैं रूथ को लेता हूँ, और रूथ मेरी दुल्हन होगी। वे क्या कहेंगे? वह लिया और राहेल के उनके और समान हो जाएं और हजारों को पाले पोसें, और वो करती है, ये ठीक बात है। इसराइल के निमित्त होने पाए वह भी ऐसे ही हो। और देखिए, उसने एक परीक्षा की, लोगों के मध्य में गवाही। यीशु ने क्या किया यह करने के लिए? उसने लोगों में गवाही दी, जब शैतान पाप के लिए नहीं मर सकता क्योंकि वह पापी था, वह पाप का पिता था, परंतु यीशु एक दोषहीन स्वर्ग का परमेश्वर जिसे मरना नहीं था, नीचे आया और मरकर लोगों में गवाही दी, स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य में उठाया गया, एक लोगों के लिए गवाही। उसके कपड़े उस पर से उतार दिए गए और स्वर्ग पृथ्वी के मध्य में लज्जा में लटकाया गया और मर गया, एक पाप से भरी, लज्जा से भरी मृत्यु, जिससे कि हमें छुड़ा ले, एक गवाही लोगों के मध्य में। आमीन। उसने क्या किया? अपनी खुद की धार्मिकता को लात मार दी, अपनी ही महिमा में लात मार दी, लात मार दी। मेरे पास सामर्थ है, मैं अपने पिता से बात करूंगा और सीधा सीधा वह मेरे पास स्वर्गदूतों की 20 सेनाएं भेजेगा। वे सारे दृश्य को बदल सकते थे, एक स्वर्गदूत इसे कर सकता था, वो 20 सेनाएं बुला सकता था जिसमें कि लगभग 40,000 स्वर्गदूत होंगे। वे क्या कुछ कर सकते थे? उसने कहा, मैं सीधे अपने पिता से कह सकता हूँ, अब यह ठीक बात है, वह मेरे पास 20 सेनाएं भेजेगा, स्वर्गदूतों की सेनाएं यहाँ आएगी और इस सब पर अधिकार कर लेंगे। एक क्या करेगा? एक तो एक सेकंड में ही पृथ्वी को नष्ट कर देगा। जरा देखिए, उसके पास हजारों आ सकते थे, समझे, परंतु उसने यह छोड़ दिया, उसने वह सब एक ओर रख दिया, उसने अपने सारे सम्मान को रख दिया, हर चीज को एक ओर, और एक पापी बन गया और आपके और मेरे लिए मर गया। अब बंद करते हुए हम ये कह सकते हैं, बंद करते हुए उसने ये किया। तब उसने रूथ को लिया और उससे विवाह किया, और उसने ओबेद नाम पुत्र को जन्म दिया। ओबेद यशे का पिता था, यशे दाऊद का पिता था जो कि मसीह का पिता था, आमीन, प्रभु यीशु का पिता। क्या आप नहीं देख सकते धार्मिकता में होते हुए, उस स्पष्ट निर्णय में से होते हुए वो हमारा निकट कुटुंबी बन गया, परमेश्वर हम लोगों में से एक हो गया कि नीचे आ जाए और हमारे समान हो जाए। एक मनुष्य भूख को सहा, प्यास को सहा, मैं प्यासा हूँ मुझे पानी दो, और उन्होंने उसके मुंह में पित्त मिला हुआ सिरका दिया। उसे हमारे समान प्यास लगी, वो जानता है कि इसके बिना कैसे करते हैं। वो हमारे समान बीमार था, उसने कहा क्या वे मुझसे पुरानी कहावत को ना कहेंगे, वैद्य अपने आप को चंगा कर, परंतु उसकी महान सामर्थ उसके स्वयं के लिए नहीं थी, उसके पास यह करने के लिए सामर्थ थी परंतु वो इसे अपने लिए उपयोग नहीं कर सकता। नहीं, किसी ने मुझसे एक दिन कहा भाई ब्रैनम, इसके पहले कि कुछ भी घटित हो आप जानते हैं कि आपको क्या होने जा रहा है। मैंने कहा दान मेरे लिए नहीं है, मैं इसे अपने लिए प्रयोग नहीं कर सकता, यह तो आपके लिए है, आप हैं जिसे इसका लाभ मिलना है, ना कि मुझे, मैं तो परमेश्वर का लोगों के लिए दास हूँ, आपके लिए। प्रचारक एक सामान्य जन का सेवक है, वह स्वयं को वहाँ बनाए रखता है जैसे कि मैदान की लिली, भंवरा उड़कर आता है और अपने भाग को लेता है, मधुमक्खी उड़कर आती है और अपना भाग लेती है, पास से निकलने वाला अपने भाग को लेता है और सब बातें, वह दिन रात परिश्रम करता है अपनी चमक को बनाए रखने के लिए। और सुसमाचार का सेवक भी यही करता है, परमेश्वर के क्रम पर चलता है, अपनी गवाही की सच्चाई को बनाए रखता है ताकि संसार उसका भागी हो सके। श्रीमान पास्टर लिली वो एक भला है। यीशु ने कहा इस पर विचार करो, सुलेमान उसके समान नहीं था, यह ठीक बात है। डॉक्टर लिली, मैं समझता हूँ आप सब उसे जानते हैं, समझे, मैदान की लिली पर विचार करो कि कैसे वे ना तो परिश्रम करते और काटते हैं। मैं कहता हूँ तो भी सुलेमान अपने सारे वैभव में लिली को दिन रात परिश्रम करना पड़ता है ताकि चमक को प्राप्त करे, अपने वस्त्रों को बनाए रखे, ताकि अपनी सुगंध और चीजों को बनाए रखे। और दूसरे, वह स्वयं को खुला रखती है और वे वहाँ आते हैं और उसमें से ले लेते हैं, मधुमक्खियाँ और मक्खियाँ और हर चीज जो उसके पास से निकलती है, अच्छी या बुरी, उसमें से लेता है। मसीह का दास इसी प्रकार का होता है, मसीह सेवक स्वयं को खोल देता है, मुझ में से ले लो संसार, उसके स्वयं के लिए कुछ नहीं है, यह दूसरों के लिए है, यही है जो मसीह बन गया जब वो हमारा निकट कुटुंबी बन गया, वो मनुष्य बन गया ताकि संसार उसकी धार्मिकता का भागी हो जाए, देखिए, और परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हो जाए। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने विवाह किया और उसके द्वारा वो महान चीज आई, तब रूथ को पुरस्कार मिला था, मसीह के पाने के द्वारा, यानी बोआज उसका पति हो जाने के द्वारा, कलीसिया जो कि पुरस्कृत की गई प्रभु के आगमन के द्वारा, जब वो आएगा उस उजले और बादल रहित सुबह में, हम विश्राम कर रहे हैं, अब रुके हुए हैं, वो आएगा, अब क्यों यह छुड़ा लिया गया है। अब इसके पहले मैं छोड़ूं एक और भाव कि प्रार्थना पंक्ति को आरंभ करें, एक और उद्भव भाव, इस प्रातः मैंने ऊपर देखा शब्द छुड़ा लेना, मैं, मेरे आर्मियन भाई लोग मुझे क्षमा करें, परंतु मुझे यह रखना है, आघात पहुंचाने के लिए नहीं परंतु विचार करने के लिए। देखिए छुटकारे का क्या अर्थ है, छुटकारा, इसका वास्तविक अर्थ यूनानी भाषा में जो लागू होता है, एक गुलाम को बाजार से खरीदना। मैं इस समय पर ग्रीक शब्द का शब्द विन्यास नहीं कर सकता, परंतु उसका अर्थ बाजार से एक गुलाम को लेना छुड़ाने के लिए। एक व्यक्ति ने कुछ गलत किया, इसलिए उसके स्वामी ने उसे गुलाम के लिए बेच दिया, वास्तव में मृत्यु के लिए, और वो बाजार में था, वो एक गुलाम था, परंतु एक व्यक्ति वहाँ आया, एक योग्य मनुष्य है जो ये करने के योग्य था, और इस व्यक्ति को देखा और उसकी दृष्टि में अनुग्रह पाया, उसने उसे छुड़ाया, उसने उसे गुलामों की मंडी से ले लिया, उसे अपने आपे से बाहर निकाल लिया। ध्यान दें, और वो गुलाम जो एक बार छुड़ाया गया फिर से बाजार में बेचा नहीं जा सकता, आमीन, फिर कभी नहीं बेचा जा सकता, उस पर निशान लग गया। और यदि उसने इस विषय में बहुत सोच लिया कि एक बार छुड़ाया गया है, कोई भी कभी भी गुलामी के लिए उसे फिर नहीं बेच सकता। ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब एक मनुष्य एक बार मसीह के पास आ गया और अमूल्य लहू से छुड़ा लिया गया। शैतान आपको फिर कभी गुलाम नहीं बना सकता। आप यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित हैं जब तक आपके छुटकारे का दिन नहीं आता है। एक गुलाम इसे निर्गमन में देखिए और देखिए कि क्या यह लेव व्यवस्था का नियम नहीं था। मेरा अर्थ लेव व्यवस्था में देखिए क्या यह व्यवस्था नहीं थी। एक गुलाम जब एक बार छुड़ा लिया गया तो गुलामी के लिए कभी भी फिर नहीं बेचा जा सकता। यह ठीक बात है। ओह, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, मैं बहुत ही आनंदित हूँ यह जानकर कि हमारा छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी, वो जो स्वर्ग का परमेश्वर है, जो आत्मा था, पृथ्वी पर नीचे उतर आया और देहधारी बन गया, मेरे समान बन गया, आपके समान बन गया और पाप में शरीर का रूप धारण किया। कोई पाप नहीं जानता था, ताकि हमारे पाप उस पर डाले जा सकें, और हमारे लिए निकट कुटुंबी बन गया, मृत्यु से लोगों में गवाही दी, पूरा दाम चुका रहा है और परमेश्वर का आत्मा गवाही दे रहा है। मंदिर का पर्दा फट गया था, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर को नहीं, परंतु ऊपर से नीचे को दर्शाया कि वो स्वयं परमेश्वर था। उसने इसे फाड़ कर खोल दिया, ऊपर से नीचे को फाड़ दिया और मार्ग को खोल दिया, और बलिदान के स्थान उलट दिए गए, और अंधकार और आक्रोश से भरे आकाश में आर पार बिजली चमकी। दोपहर में सूर्य अस्त हो गया, सितारों ने चमकने से मना कर दिया और हर चीज ने एक गवाही दी, हम छुड़ा लिए गए हैं। हालेलुया। आओ हम प्रार्थना करें। अब एक क्षण के लिए आपके झुके हुए सिरों के साथ, यह भविष्यवाणी थी, संदेश के पश्चात कलीसिया के लिए पुकार थी। अब यदि यहाँ कुछ ऐसे हैं जो उसे नहीं जानते, आपके जीवन ठीक नहीं है, आपको यहाँ इस श्रोतागणों के सामने खड़े रहने के लिए निमंत्रण है। परमेश्वर का मुख कि उसे अपना बचाने वाला स्वीकार करें। बपतिस्मे के लिए पानी तालाब में है। यदि कोई बपतिस्मे की सभा आरंभ करने की प्रतीक्षा कर रहा है इस समय, जबकि हमने अपने सिरों को झुका रखा है, एक क्षण हम गाने के लिए लेना चाहते हैं। मैं निकलता हुआ जा रहा हूँ अब अपने झुके हुए सिरों के साथ।
I'm going through. Yes, I'm going through. I'll pay the price. Whatever others do, I'll take the way with the Lord's despised view. I've started in with with Jesus.
क्या अब वास्तव में आपका यह अर्थ है? यदि आप करते हैं तो यहाँ आकर खड़े हो जाएं। क्या आप साथ लगे रहना चाहते हैं उस पुराने समय की नियोमी के समान? क्या आप अपने छुड़ाने वाले के समान होना चाहते हैं? क्या कोई और होगा जिसके समान आप होना चाहेंगे उसे छोड़कर? क्या कोई यहाँ इस युवा महिला के साथ जैसे उसने घुटने टेके हैं आएगा पुराने समय की रूप के समान लेते हुए अपने मार्ग इस प्रातः ले रही है? कोई और आएगा अब यहाँ आकर और इस महिला के समान यहाँ घुटने टेक लें? क्या आपने आरंभ कर लिया है? क्या आप अपने हाथ उसके हाथों में डालेंगे? हमारे स्वर्गीय पिता, जबकि कलीसिया इस गाने को गुनगुना रही है कि यीशु के समान बनूं, इस महिला ने रूथ के समान आज सुबह अपने कदम को बाहर निकाला। इनाबेल पुराने समय की रूथ के समान आ रही है। कोई बात नहीं कि क्या दाम है, वो इसका भुगतान करने आ रही है। कोई मतलब नहीं कि क्या उस पर कैसे हंसा जाएगा या उपहास उड़ाया जाएगा, वो अब स्थान को ले रही है। यहाँ खड़ी हुई अपने पापों को मान रही है, घुटने टेके हुए उस स्थान को चिन्ह रही है जहाँ कटाई का महान प्रभु क्रूस पर लेटा था, और वहाँ उसके आत्मा को पाले उसका अनुग्रह जो उससे बोला जैसे ही शब्द निकला, जैसे कि बूढ़ी नियोमी ने निर्देश दिया था। उसने सही वाले पर प्रहार किया सही स्थान पर, और अब वो विश्वासी का स्थान लेने आ रही है क्रूस पर घुटने टेकते हुए, जहां वह अपने पापों को मानती है, जीवन की सारी पुरानी बातें एक ओर रख देती है और मसीह यीशु में नई सृष्टि बन जाती है। पिता, इस प्रातः हम प्रार्थना करते हैं इस भवन में बहुत से अलग किए गए व्यक्ति, प्रत्येक पुरुष, स्त्री, लड़का या लड़की जो आपको नहीं जानता, प्रभु ये वचन उनके कानों पर से निकल न जाए। हम नहीं जानते कि हम किस घड़ी न्याय में आ जाते हैं, ये आज अभी हो सकता है कि हम में से बहुतों को आना है, हो सकता है कि हमारे घर पहुंचने से पहले कोई दुर्घटना घटित हो जाए, हो सकता है हृदय का दौरा हम पर प्रहार करे, हम नहीं जानते। ओ परमेश्वर, जबकि आत्मा यहाँ पर है तो हम इस घड़ी में तैयार हो जाएं, जबकि हमारे पास गवाही है कि वो यहाँ पर है, जबकि स्वर्ग का परमेश्वर अपने अनंत अनुग्रह में यहाँ हमें भीतर लेने के लिए है। प्रभु अपने अनुग्रह में से दे, औरों को भी इस प्रातः वेदी पर भेजें और मसीह को अपना बचाने वाला स्वीकार करें, जैसे ये महिला यहाँ पर कर रही है। प्रभु इसे प्रदान करें, इस पर अनुग्रहकारी हो, यह जानते हुए कि इसके लोग, इसका भाई यहाँ मेरे साथ मंच पर बैठा हुआ है, उसकी बहन वुड वहाँ पीछे बैठी है, माता और पिता यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्रभु परमेश्वर, मैं अनुग्रह के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु इसे ग्रहण करें। आप जानते हैं मेरे हृदय में क्या अर्थ है। मैं विनती करता हूँ कि आपका बहाया हुआ लहू अनुग्रह में इस घड़ी में यहाँ पर आएगा। प्रभु इसे प्रदान करें, इसे ग्रहण करें, जबकि हम औरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हो सकता है दूसरे भी आए पिता, और मसीह में होते हुए परमेश्वर में मिलाए जाएं। और अब जबकि हम प्रतीक्षा कर रहे हैं और सोच रहे हैं, हम फिर से गाना गाने जा रहे हैं, मुझ पर चमक हे प्रभु, मुझ पर चमक, प्रकाश के स्तंभ से मुझ पर उजाला चमके। तो ठीक है, जी हाँ, क्या कोई और आगे आएगा? यह मुझे क्या बनाएगा? पिता परमेश्वर, यही सच में हमारी गवाही है। प्रभु, हम उसके समान होना चाहते हैं, विनीत और दीन, नम्र, मधुर, सदा उन्हें क्षमा करते हुए जो उससे दुर्व्यवहार करते हैं और गलत करते हैं। हम उस प्रकार का होना चाहते हैं इस महिला के लिए। हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं जो इस प्रातः आगे आई है। हम भला किस तरह से जानते हैं कि थोड़ी देर पश्चात यह जीवन क्या हो जाएगा? संभव है उसकी सारी गलतियाँ और जीवन की चीजों में से होते हुए, जैसे कि हम सब ने किया, उन्हें भाव के नीचे डुबकी लगाते हुए देख रहे हैं इस प्रातः। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह महिला पवित्र जीवन जिएगी और अपने संबंधियों को इस अनुभव के लिए अगुवाई करेगी। होने पाए बहन यहाँ पर ना रुके, परंतु प्रतिज्ञा के देश में बढ़ती जाए, स्थान को चिन्हित करते हुए और लेटते हुए वहाँ पवित्र आत्मा प्राप्त करते हुए प्रभु इसे प्रदान करें। कोई और यहाँ पर है पिता, उसे आना चाहिए और नहीं आया, आपका आत्मा उन्हें ना छोड़े, होने पाए उन्हें रात या दिन कोई विश्राम ना मिले जब तक वे ना आ जाएं और इसी निर्णय को ना ले लें। निश्चुर होने के लिए नहीं प्रभु, परंतु हे परमेश्वर, हम जानते हैं कि वे कहाँ चूक रहे हैं, यह जानते हुए कि उस दिन क्या होगा, उसे यह कहते हुए सुनना, दुष्ट कार्यों के करने वालों मुझसे दूर हो जाओ। उस प्रातः मैंने तुम्हें आठवीं और पैन गली में पुकारा था और तुम नहीं आए। हे परमेश्वर, उनके लिए क्या ही भयानक घड़ी होगी जब हम तोले गए और हल्के पाए गए। पिता, इसे ग्रहण करे कि यह बात किसी के जीवन में ना हो, आपकी दिव्य उपस्थिति में होने पाए, ये सब बचाए जाएं। हम यह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। इस प्रातः हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं उसकी भलाई और कृपा के लिए, आपके धैर्य के लिए। आपको धन्यवाद कि मेरे साथ इतने लंबे समय प्रतीक्षा की। बहन इनाबेल, मैं बहन वुड, भाई चार्ली, आपकी जो बहन है, वे क्या प्रार्थना कर रहे थे और हमने क्या प्रार्थना की थी बहुत समय पहले। यह बहन इलाबेल, क्या आप खड़ी होंगी एक क्षण के लिए। यह बहन वुड की यहाँ कलीसिया में हमारे ट्रस्टी हैं। यह उनकी साली है जिसने यीशु को इस प्रातः अपना बचाने वाला स्वीकार किया है, और कितनी प्रार्थनाएं हुई। परमेश्वर आपको आशीष दे बहन इनाबेल। मैं सोचता हूँ कि मैंने आपका नाम सही लिया है, क्या ये ठीक है। प्रिय बहन, परमेश्वर सदा आपको आशीष दे। यदि आपका बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम में कभी नहीं हुआ है तो मैं आपको उत्साहित करता हूँ कि इसे ले लें और पवित्र आत्मा पालें। परमेश्वर सर्वदा आपके संग रहे और वहाँ आपके बहुमूल्य पति को आशीषित करें। मैं उनसे कुछ दिनों पहले मिला, यदि मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो उनका नाम स्टैनले है, क्या ये ठीक है। स्टैनले, परमेश्वर आपको आशीष दे। घर सुहावना है, परंतु मैं विश्वास करता हूँ कि अब यह पहले से कहीं और अधिक सुहावना हो जाएगा। परमेश्वर सदा आपके संग हो और आपको अपना अनुग्रह और दया दे आपके जीवन के दिनों में। प्रभु के पीछे पीछे चलें, इनाबेल रूट के समान बने, ठीक उसी में लगे रहें, केवल आगे बढ़ते रहें। कभी कभी यह कठोर होगा और मार्ग धूमिल होंगे, परंतु स्मरण रखें, केवल नीचे जमीन की ओर देखें और फिर ऊपर आकाश की ओर देखें। आप लहूलुहान पैर के चिन्ह को पाएंगे जो वहाँ तक जा रहे होंगे, वो मार्गदर्शन करेगा। अब ओह, यह तो दोपहर हो गई, 12 बजे हैं। क्या अब भी आप प्रार्थना पंक्ति को चाहते हैं? बिली कहाँ, किस प्रकार, क्या उसने प्रार्थना पत्र दिए हैं? मैं कभी भी नहीं, मैं विश्वास करता हूँ उसने मुझे बताया कि उसने प्रार्थना पत्र। अच्छा, ये क्या था, कोई मुझे बताए कि अक्षर और नंबर क्या था। क्या बी एक से लेकर 100, 50 से लेकर 100, ठीक है, बी नंबर एक। उनके पास, अब हमारे पास भीड़ है इसलिए हम नहीं कर सकते, हम उन सबको खड़ा कर लेंगे और उन्हें यहाँ से निकालेंगे जबकि मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। अब कितने लोगों ने कभी एक भी प्रार्थना पंक्ति नहीं देखी, आइए आपके हाथों को देखें। मेरी सभा में कभी नहीं थे प्रार्थना पंक्ति में। ओ प्रभु, आप बहुत सारे हैं। अच्छा, अब हम केवल लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, या हम विचारों को परख सकते हैं, या बिल्कुल भी प्रार्थना पंक्ति को न लें, केवल उन्हें श्रोता गणों में से बुलाएंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। पवित्र आत्मा यहाँ पर है, जी हाँ श्रीमान, परंतु आइए हम प्रार्थना पंक्ति में खड़े हों। नंबर एक किसके पास है? नंबर एक प्रार्थना पत्र बी है। नंबर 50, मुझे क्षमा करें, एक किसी के पास नहीं है, ठीक है, तो ठीक है, प्रार्थना पत्र 50, ये किसके पास है? श्रीमान यहाँ आए, प्रार्थना पत्र 2, 51, 52, प्रार्थना पत्र 52, ठीक है, 53, 53, तो ठीक है, 54, इधर से आइए यहाँ पर, यदि आप पीछे हैं तो यहाँ से आए यहाँ पर, 51, 52, 53, 54, 55 किसके पास है? प्रार्थना पत्र 55, वो महिला ठीक यहाँ पर, प्रार्थना पत्र 56, दीवार की ओर खड़ी हो जाएं, उधर यदि आप चाहें तो, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, बस्ती ठीक वहाँ उस वाले गलियारे में से घूम जाएं, वहाँ से भाई ठीक वहाँ, ठीक है, उधर से घूमें। कितनों के पास प्रार्थना पत्र नहीं है, और आप चाहते हैं कि प्रभु आपको चंगा करे, अपने हाथ उठाएं। ठीक है, आपको केवल इतना करना है कि आप विश्वास करें, केवल विश्वास। ठीक है, 56, क्या मैंने ले लिया? 57, 58, 59, 60, उन्हें खड़ा होने दें। 61, 2, 3, 4, 5, उन्हें खड़ा हो जाने दो। 66, 67, 68, 69, 70, उन्हें खड़े होने दो। मैं नहीं चाहता कि वे सब एक बार में भीड़ लगा दें। यही कारण है कि मैं नंबर पुकार रहा हूँ। 70 तक, 70 से लेकर 80 खड़े हो जाएं, यहाँ इस ओर आ जाएं। 70 से 80, तो ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। 80 से 90 यहाँ खड़े हो जाएं। डोक, आप यहाँ उनकी सहायता करें यदि आप चाहें। 80 से 90 इस ओर खड़े हो जाएं। 90 से लेकर 100 इस ओर यहाँ खड़े हो जाएं, यहाँ पर, तो ठीक है। जबकि ये लोग पंक्ति बना रहे हैं, मैं कलीसिया से कुछ पूछना चाहता हूँ। यहाँ कितने लोग अपरिचित हैं, इसके पहले कभी भी मेरी सभाओं में नहीं थे? आप में से कितने लोग जानते हैं कि कोई मनुष्य दूसरे को चंगा नहीं कर सकता, डॉक्टर भी नहीं? नहीं श्रीमान, डॉक्टर एक चंगाई देने वाला नहीं है, वो प्रकृति की केवल सहायता करता है। परमेश्वर ही चंगा करने वाला है, समझे? डॉक्टर हाथ को बैठा सकता है, परंतु वो हाथ को चंगा नहीं कर सकता। डॉक्टर अपेंडिक्स को हटा सकता है, परंतु जहाँ से काटा है उस स्थान को चंगा नहीं कर सकता। डॉक्टर दांत को निकाल सकता है, परंतु बहते हुए लहू को रोक नहीं सकता या उसे चंगा नहीं करता। परमेश्वर को ये करना था, ठीक है। कितने ये जानते हैं कि जब यीशु यहाँ पृथ्वी पर था, उसने कभी भी स्वयं को चंगा करने वाला होने का दावा नहीं किया? वो एक मनुष्य था। उसने कहा, यह मैं नहीं जो इन कार्यों को करता हूँ, परंतु मेरा पिता जो मुझ में रहता है वह यह कार्यों को करता है। क्या यह ठीक बात है? कितने जानते हैं जब वो यहाँ पृथ्वी पर था, क्या कैसे उसकी सेवकाई किस प्रकार की थी? जब वो यहाँ पर था, उसे जो पिता ने दिखाया वही उसने किया। क्या यह ठीक बात है? कितने जानते हैं? ये जानते हैं। संत यूहन्ना 5:19, उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पुत्र स्वयं से कुछ नहीं कर सकता, परंतु वही जो पिता को करते हुए देखता है। क्या यह ठीक बात है? उसी प्रकार से पुत्र करता है। अब तो क्या यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है? क्या आप इस बात का अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं? वो कल और सर्वदा एक सा है? क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु का कल और सर्वदा एक सा होना, जिसका अर्थ है कि वो वास्तव में एक सा है? ठीक है, वो कैसे एक सा है? हर एक सिद्धांत में एक सा है, ये ठीक है। वो एक सा परमेश्वर है, वही चंगा करता, वही वो बचाने वाला, वो एक सा है, वही एक सी मनोस्थिति, यही सब एक सा है। क्या ये ठीक बात है? एक सा, ठीक है। तब यदि वो एक सा था और एक सा है, तो वो एक सा ही कार्य और व्यवहार करेगा। क्या ये ठीक बात है? अब कितने जानते हैं कि यह सत्य है? मैं केवल एक क्षण यहाँ लेने जा रहा हूँ, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, यह मेरी ओर नहीं देखता, जैसे कि यह 50 लोग यहाँ पर खड़े हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, नहीं, उनमें से कुछ संभवत जल्द घर चले गए। मैंने कुछ लोगों को वहाँ से वापस जाते देखा है। ठीक है, केवल यह कुछ छोटी सी पंक्ति, कितने इसे लेना पसंद करते हैं? इस पंक्ति में मुझसे कितने लोग अपरिचित हैं, अपने हाथ उठाएं, जो जानते हैं कि मैं उनके विषय में कुछ नहीं जानता, ऊपर उठाएं मेरे, आपका हाथ। कितने लोग बाहर हैं, अपरिचित, जानते हैं कि मैं आपके विषय में कुछ नहीं जानता, अपने हाथ उठाएं कि आप बीमार हैं। ठीक है, कितने चाहते हैं कि पंक्ति में विचारों का परख ना देखें, इसलिए हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं और पूरा करें। क्या आप पसंद करेंगे? अब इससे कोई मतलब नहीं। मैं केवल उनके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, उन्हें पंक्ति में ला सकता हूँ, या वे बैठ सकते हैं, केवल जाकर और बैठ जाएं, कोई अंतर नहीं पड़ता। पवित्र आत्मा इसे जांच सकता है। ठीक वैसे ही, क्या आप इसका विश्वास करते हैं? अब यदि यह ऐसा है, तो जरा शांत रह जाएं। बस एक क्षण, थोड़ी देर हो रही है, इसलिए थोड़ा शांत बैठें। एक मिनट, अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हो सकता है मैं यहाँ गलत माइक पर हूँ। दोनों ठीक हैं? दोनों चालू हैं? ठीक है, यह भी ठीक है। अब एक क्षण के लिए थोड़ा शांत हो जाएं। मैं इस पंक्ति में देखने जा रहा हूं, देखता हूं क्या मैं किसी को जानता हूं। मैं उसको जानता हूँ, वो व्यक्ति जो वहाँ खड़ा है। अब मैं एरल को जानता हूँ। एरल, मैं आपको जानता हूँ, एरल कॉलविन। ओह हाँ हाँ हाँ, वो व्यक्ति यहाँ पर है। क्या यही व्यक्ति है जिसके साथ हमने शिकार किया था वहाँ कोलोराडो में? ओह प्रभु, निश्चय ही मैं नहीं, मैं विश्वास करता हूँ। एरल ने मुझे बताया था कि आप बहुत बीमार हैं और आप आ गए हैं। अब यदि आप अधिक समय तक खड़े नहीं रह सकते हैं, तो कोई उन्हें वहाँ कुर्सी दे दे, या उनमें से कोई खड़ा होकर और उसे बैठने के स्थान को दे, ये अच्छा रहेगा, क्योंकि यह व्यक्ति बहुत ही बीमार है। प्रभु, वो लगभग 100 पाउंड या अधिक वजन गवा चुका है और वो बहुत ही बीमार है। अब उसे वहाँ बैठ जाने दें, उससे धन्यवाद देना आरंभ करें। वहाँ भाई, अब मुझे नीचे देखने दें। अब एरल उसके साथ खड़ा था, अब ये व्यक्ति ठीक वहाँ पीछे खड़ा है, मेरी ओर देख रहा है। यह लागरिंग कंटकी आसपास से है। मैं उसका नाम नहीं जानता, परंतु मैं आपको जानता हूँ, और यह भाई और बहन किड वहाँ पर है, मैं उन्हें जानता हूँ। और यह महिला, ठीक, क्या वह बहन रूख है या यहाँ इस महिला के साथ सेल्सबर्ग से? मैं विश्वास करता हूँ ये अंधी है, क्या ये ठीक बात है? ठीक है, मैं सोचता हूँ यही सब है इस पंक्ति में जिन्हें मैं वास्तव में जानता हूँ। ओह हाँ, यहाँ मेरा अच्छा मित्र है बस्टी रोग्रेस, यहाँ जो वहाँ मिल टाउन से है, और वहाँ पंक्ति में मैं समझता हूँ वे बाकी के लोग मेरे लिए अपरिचित हैं। अब ये परमेश्वर के सम्मुख है, जहाँ तक मैं जानता हूँ वे मेरे लिए अपरिचित हैं। अब मुझे श्रोतागणों में देखने दें। अब आप जो मेरे लिए अपरिचित हैं, जो बीमार हैं, अपने हाथ उठाएं, और आप जानते हैं कि आपके हृदय पर निवेदन है, आप जहाँ भी हैं अपने हाथ उठाएं। जो जानते हैं कि मैं तो ठीक है, अच्छा ठीक है, ये बस सामान्य है लगभग सभी जगह। अब यह आपको तकलीफ नहीं पहुँचाएगा, थोड़ी सी प्रतीक्षा करें, थोड़ा सा या अधिक देर। मैं आपसे एक गंभीर प्रश्न करना चाहता हूँ, अच्छा होगा कि मैं यहाँ पीछे आ जाऊँ ताकि आप मुझे सुन सकें। मैं अब आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अब ये संदेश जो मैं आप लोगों को प्रचार कर रहा हूँ, क्या आप विश्वास करते हैं कि ये सत्य है? आप निश्चित हैं? यदि ये ऐसा नहीं होता तो आप लोग यहाँ नहीं आते। अब क्या परमेश्वर मुझे इस प्रकार का कुछ देगा बिना किसी धारणा के कि मैं क्या कर रहा हूँ? निश्चय ही वो नहीं करेगा। अब यदि उसने ये कर दिया है, अब मैं ये दावा कर रहा हूँ कि यीशु मसीह बदला नहीं है, उसकी मृत्यु ने उसे बदला नहीं है, उसने उसे महिमावंत किया है, और वो तीसरे दिन जीवित हो उठा और ऊंचे पर चढ़ गया, और उसने पवित्र आत्मा को वापस भेजा जो परमेश्वर था। ये वही पवित्र आत्मा है जो उस पर था। क्या आप सब इसका विश्वास करते हैं? और यीशु जब वह यह पृथ्वी पर था, उसने कहा, जो कार्य मैं करता हूँ तुम भी करोगे थोड़ी देर के बाद, और संसार मुझे और न देखेगा। ये संसार का चलन आप जानते हैं, अविश्वासी कलीसिया और वे सब, वे मुझे और न देखेंगे, तो भी तुम मुझे देखोगे। तुम यही वो कलीसिया है विश्वासी, क्योंकि मैं एक व्यक्तिगत स्वर्णनाम है, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, यहाँ तक तुम्हारे अंदर होऊंगा, संसार के अंत तक। और यूनानी में नष्ट होने तक है, जिसका अर्थ है संसार के अंत तक। संसार के अंत तक तुम्हारे संग होऊंगा, और जो कार्य मैं करता हूँ तुम भी करोगे। क्या ये सत्य है? अब हमारे यहाँ बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, और यहाँ तक कि यहूदी भी यहाँ इस प्रातः बैठे हुए हैं, और यहाँ हमारे पास चर्च ऑफ गॉड, नाजरीन, पिलग्रिम ऑफ होलीनेस, यहोवा विटनेस और सारे विभिन्न नामधारी उपस्थित ने प्रतिनिधित्व किया है। मैं चारों ओर उन्हें देख सकता हूँ, उनकी ओर देखता हूँ, मेथोडिस्ट, लूथरन, पेंटिकॉस्टल, सारे विभिन्न प्रकार के। जैसे मैं चारों ओर देखता हूँ, उन लोगों को देखता हूँ जिन्हें मैं जानता हूँ, और वे सब नगर के बाहर से यहाँ पर आए हैं। ब्रैनम आराधनालय अपने में छोटी सी चीज है यहाँ इस नगर में, परंतु यह समस्त संसार से बना है। अब हम जरा इसे लें और ध्यानपूर्वक सोचें, अध्ययन करें, आदर युक्त होकर और इस प्रश्न को पूछें। तब यदि वह मृत नहीं है, तो उसका आपके प्रति रवैया और बीमारों आपके प्रति आज भी वैसा ही होगा जैसा बीते कल में था, तो उसने बीते कल अपना रवैया कैसा बनाया था? यह यदि तू विश्वास करे तो मैं कर सकता हूँ, क्या ये ठीक बात है? यदि तू विश्वास करे, व्यक्ति ने कहा, प्रभु मुझ पर दया कर। कहा, मेरा पुत्र प्रेत से बुरी तरह ग्रस्त है, मैं तेरे चेलों के पास लाया था और चिल्ला और शोर मचा रहे थे, और सब कुछ। उसने कहा मैं कर सकता हूँ यदि तू विश्वास करे, यदि तू विश्वास करे मैं कर सकता हूँ। अब ध्यान दें, यीशु ने कैसे किया, कल वो क्या था, उसने कैसे सेवकाई की। अब यह अपरिचित लोगों के लिए है जिनसे मैं बात कर रहा हूँ। आइए देखें वो कल क्या था। मुझे केवल 3 मिनट दें, हम थोड़े स्थानों पर इसका उल्लेख करेंगे। जब उसकी सेवकाई आरंभ हुई तो वहाँ पर एक इंद्रियास नाम का मनुष्य था, एक मछुआरा, मत परिवर्तित हुआ था। उस पर विश्वास किया और जाकर अपने भाई को बुलाकर लाया जिसका नाम शमोन था। क्या आपको याद है, वह उसे यीशु के पास लेकर आया। वो अनपढ़ मछुआरा था, अपने नाम का हस्ताक्षर भी नहीं कर सकता था, और वह यीशु के सामने आया और यीशु ने उसे देखा और कहा तेरा नाम शमोन है, तू योना का पुत्र है। कितने जानते हैं कि यह पवित्र लेख है, वे जान गए कि यह मसीह था, क्योंकि वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा किया हुआ है। मूसा ने इसकी प्रतिज्ञा की, जब मसीह आता है तो वो एक भविष्यवक्ता होगा। क्या ये ठीक है, भविष्यवक्ता मसीह? और उसने देखा और उसने कहा तेरा नाम शमोन है, और कहा तेरे पिता का नाम योना था, और वो जान गया कि यह मसीहा है। वो स्त्री कुएं पर, ये दूसरे देश के लोग हैं। अब केवल यहूदियों और सामरियों ने उसे स्वीकार किया था, अन्य जाति हम अभी तक नहीं आए थे। रूत का झुंड, अब वो स्त्री कुएं पर जो कि सामरी थी, वो पानी लेने आई थी। यीशु ने कहा मुझे पानी पिला। वो क्या करेगा, उससे बातें की जैसे कि मैं वहाँ किसी से बातें करना चाहूँगा। वहाँ श्रोतागणों में से कहा मुझे पानी पिला, वे पहले कभी नहीं मिले थे। और उसने कहा क्यों, यह रीति नहीं है, हम में अलगाव है, जैसे कि दक्षिण में हमारे अश्वेत मित्रों के साथ होता था, और आदि आदि, परंतु अब और नहीं है। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए उसने कहा हमारे मध्य में व्यवहार नहीं है, क्योंकि यह तेरे लिए व्यवहारिक नहीं है, तू यहूदी है। यीशु यहूदी था, वो एक सामरी थी। कहा यह तेरे लिए मुझसे कहना रीति नहीं है, एक ऐसी सामरी स्त्री। उसने कहा परंतु स्त्री, यदि तू जानती कि तुझसे कौन बात कर रहा है तो तू मुझसे पानी मांगती। इससे वो सुंदर स्त्री रुक गई और उसने देखकर कहा क्यों, तेरे पास जल निकालने के लिए कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है। उसने कहा जो पानी मैं देता हूँ वो अनंत जीवन है। और अंत में उसने पाया कि उसकी परेशानी क्या थी। कितने जानते हैं, अपरिचित, कितने जानते हैं कि उसकी क्या परेशानी थी। उसके पास 5 पति थे, इसलिए उसने उससे क्या कहा, उसने कहा जाकर अपने पति को यहाँ बुला कर ला। उसने उसकी ओर देखा, उसने कहा मेरे पास कोई पति नहीं है। उसने कहा तूने ठीक कहा, क्योंकि तेरे 5 थे और जिसके साथ तू रह रही है वो तेरा पति नहीं है। उसने कहा श्रीमान, मुझे प्रतीत होता है कि तू भविष्यवक्ता है। अब हम जानते हैं कि जब मसीहा आता है, जो कि यीशु है, जब मसीह आता है वो हमें सारी बातें बताएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वो भविष्यवक्ता होगा। हम जानते हैं जब मसीह आता है तो वो यह करेगा, परंतु तू कौन है? उसने कहा मैं वही हूँ। और इस पर वो नगर को भाग गई और कहा आओ देखो एक मनुष्य, उसने जो मैंने किया वो बताया है, क्या यही तो मसीह नहीं है? यदि कल मसीह का यह चिन्ह था और आज वो वैसा ही है, आज भी वही बात है। अब आप जो लोग अपरिचित हैं इसका विश्वास करते हैं। अब यहाँ आप जो पंक्ति में हैं उनके लिए है। अब वे जो बाहर हैं, केवल एक वचन, ताकि आपके पास स्थिर होने के लिए कुछ हो। आप में से कितने यह विश्वास करते हैं कि अब वो महायाजक है जिसे हमारी निर्बल भावनाओं के द्वारा छुआ जा सकता है? हम सब स्वर्गीय पिता जो मुझे जानता है, जानता है जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने उस मनुष्य को कभी नहीं देखा। अब हो सकता है उसने मुझे देखा हो और मैंने उसे देखा होगा, लेकिन यदि देखा है तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, क्योंकि मैं कई बार दुनिया भर में घूम चुका हूँ, बीमारों और चीजों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, और मैं हो सकता है कि मैं उससे कहीं मिला हो और उसे देखा हो या कुछ और, मुझे नहीं पता। लेकिन कुछ भी हो, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, ये सच है। क्या ये सही है श्रीमान, जिससे कि लोगों को पता चले? देखा तो ठीक है। अब वो मनुष्य किसी कारण से यहाँ खड़ा है। अब वो व्यक्ति कहाँ है जो शिकारी है, एफरसन या कभी? तो ठीक है, मैं बस यही चाहता हूँ कि वो इसे देखे। वो कहाँ पर है, बस्ती रोजर्स कहाँ पर है? अब वहाँ पर खड़ा है, अब यहाँ। अब बस्ती, तुम मुझे जानते हो, मिस्टर एफरसन, आप जानते हैं, क्या ये सही है एफरसन? हाँ, आप मुझे जानते हैं, हमने कोलोराडो में एक साथ शिकार किया है, मैं वो व्यक्ति हूँ। वो मनुष्य एक नसों की अवस्था से पीड़ित है, ये उसकी परेशानी है। इससे आपको प्रोस्टेट हो गया है, ये ठीक बात है। रात्रि को उठते हैं और आदि आदि। आप ओहियो से हैं और आप भाई सुलिवान की कलीसिया से हैं या वहाँ जाते हैं? मैं देख रहा हूँ कि भाई सुलिवान पास में खड़े हैं, आपके बच्चे साथ आए हैं जिनके लिए आपने किया, ये ठीक बात है। तो ठीक है, इस समय अब आप अलग महसूस कर रहे हैं, इसने तुम्हें छोड़ दिया है। अब आप घर जा सकते हैं, आपके विश्वास ने आपको चंगा किया है। अब परमेश्वर आपको आशीष दे। अब क्या आप विश्वास करते हैं? अब मैं आपको नहीं जानता श्रीमान, आपका चेहरा मुझे जाना पहचाना लगता है, परंतु अब जहाँ तक आपको जानने की बात है, स्वर्ग का परमेश्वर जानता है। मैं आपके विषय में कुछ नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि आपके साथ क्या गड़बड़ है। मेरे पास ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि आपके साथ क्या गलत है। आप केवल एक व्यक्ति हैं जो यहाँ पर खड़ा है, आपके पास एक प्रार्थना पत्र है जिसके ऊपर एक नंबर लिखा है, और आप केवल लड़के ने आपको प्रार्थना पत्र दिया है और आपको यहाँ प्रार्थना पंक्ति में बुलाया गया है। अब देखें कि ये कैसे खुल रहा है। आप देखिए, एक बार यह कठिन था, एक बार इसमें मेरे लिए बहुत किया, यह एक बार सारे समय मैं इस प्रातः प्रचार कर रहा था, कुछ बाहर जा रहा था, देखा कुछ बाहर जा रहा था। नवयुवक, वास्तव में आप यहाँ अपने लिए नहीं हैं, आप किसी और के लिए हैं, और वो एक बालक है। वो बालक यहाँ नहीं है, यह एक मैदानी देश में है, कैंसास। उसे मिर्गी के समान दौरे पड़ते हैं। मिर्गी ये क्या है? बालक के ऊपर अंधकार की छाया है। आपका कुछ संबंध है या आप खेल से हैं? क्या आपकी सारी बहनों का विवाह हो गया या कुछ इस प्रकार का? ये ठीक बात है। क्या आप विश्वास करते हैं? तो फिर अब आपको और दौरे नहीं पड़ेंगे यदि आप अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करते हैं। जैसे कि आपने विश्वास किया वैसे ही बालक के संग हो। अब जाएं और इसे संदेह ना करें। अब आप पूरे हृदय से विश्वास करते हैं, आप सभी लोग किसी के लिए प्रार्थना करना, प्रार्थना करें और परमेश्वर प्रदान करे। वो महिला वहाँ बैठी हुई है, उस मौसी के लिए प्रार्थना कर रही है जिसको कैंसर है वहाँ पर। क्या आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करती हैं? वहाँ पीछे क्या आप विश्वास करती हैं? मैं आपको नहीं जानता, मैंने आपको अपने जीवन में कभी नहीं देखा है, परंतु जब आपने मुझे उस व्यक्ति को कुछ बताते हुए सुना कि वो एक संबंधी के विषय में सोच रहा था, तो आपके पास आया। अब आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं? अब उसने क्या छुआ? मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे बताएं कि स्त्री ने क्या छुआ। वो मुझसे 20 फीट की दूरी पर है, उसने मुझे कभी नहीं छुआ, लेकिन उसने उस महायाजक को छुआ। आप देख रहे हैं बस्ती, आप देख रहे हैं श्रीमान, उसने मसीह को छुआ। मसीह वहां पर आता है और मुझे बताता है कि वो क्या चाहती थी। अब उसे वही मिलता है जो उसने मांगा था। एक महिला, मैं इस महिला को नहीं जानता, वो मेरे लिए अजनबी है। क्या यह सही है? हम अजनबी हैं। जैसा कि मैं जानता हूँ, मैंने उसे अपने जीवन में कभी नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर उसे जानता है। यदि परमेश्वर मुझे आपके बारे में कुछ बता सकता है, जैसे उसने उस महिला को कुएं पर बताया था, तो कुछ ऐसा प्रकट करे जो आपके हृदय में होता है। क्या आप इसे स्वीकार करेंगे और विश्वास करेंगे कि यह मैं नहीं कर सकता, एक मनुष्य के रूप में आपको ये बता रहा हूँ, यह परमेश्वर होगा? क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? अब चाहिए दो, या ये कितने हैं? हमने पहले ही तीन लिए। दो, दो, ठीक है, ठीक है। उस महिला पर मृत्यु की छाया है, उस पर काली छाया है, जो कि उसको कैंसर है, ये ठीक बात है। डॉक्टर ने आपको बताया है कि यह गिल्टी का कैंसर है, ये ठीक है। आप अपना हाथ उठाएं। आप यहाँ दूर से हैं, लोवा, आप विश्वास करती हैं आपके पास एक या तो पुत्र है या यह पोता है, और यह उसकी आंख में कुछ गड़बड़ है, और आप उसके लिए प्रार्थना कर रही हैं। अब विश्वास करती हैं कि परमेश्वर मुझे बता सकता है कि आप कौन हैं, श्रीमती मिकी। तो फिर आप घर वापस जाएं और चंगी हो जाएं। यीशु मसीह आपको चंगा करता है। क्या अब आप पूरे हृदय से विश्वास करते हैं? मैंने अपने जीवन में उस महिला को कभी नहीं देखा, ये क्या करता है? बस कुछ क्षण रुके, आदर पूर्वक बस कुछ क्षण। मैं ठीक पीछे एक अश्वेत महिला को बैठा हुआ देख रहा हूँ, या पीछे बैठी है, और वो प्रकाश जो आप उस चित्र में देख रहे हैं उस महिला के ऊपर मंडरा रहा है जो वहाँ पीछे बैठी हुई है, मेरे भविष्यवक्ता होने का विश्वास करती है। बहन, आप अपने पति के लिए जो मृत्यु की स्थिति में है प्रार्थना कर रही हैं वेटरनेस अस्पताल में। यहोवा यो कहता है, अब अपने पूर्ण हृदय से विश्वास करें, वो चंगा हो जाएगा। उसने क्या छुआ? वहाँ एक महिला है, एक अश्वेत महिला, एक श्वेत पुरुष, कुएं पर उस स्त्री की तरह। उसने क्या छुआ? उसी यीशु को। वो वही महिला नहीं है जो अश्वेत महिला थी या सामरी महिला थी, वो दूसरी महिला है। मैं यीशु नहीं हूँ, वही मनुष्य, मैं दूसरा मनुष्य हूँ। लेकिन वो उस महिला की तरह यीशु मसीह पर विश्वास करती है, और मैं एक विश्वासी हूँ और उसका सेवक हूँ, और वही आत्मा इस दिन में काम कर रहा है। मसीह मरा नहीं है, वो जीवित है। मैंने उसे अपने जीवन में कभी नहीं देखा या उसे नहीं जानता हूँ। अब आप देखिए, यहाँ आने के लिए आपके पास प्रार्थना पत्र होना जरूरी नहीं है, आपको बस परमेश्वर पर विश्वास होना है। क्या यह सही नहीं है? अब मैं वहाँ उस महिला को जानता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वो किस लिए प्रार्थना कर रही है, उस भतीजी के लिए। आप इसे विश्वास करती हैं वहाँ दक्षिण में? यदि आप पूरे हृदय से विश्वास करेंगी तो वो चंगी हो जाएगी। आपके विषय में क्या है? हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। आप अभी एक जवान पुरुष हो, मैंने आपको अपने जीवन में कभी नहीं देखा। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मुझे बता सकता है कि आपकी परेशानी क्या है? यदि वो करेगा तो क्या यह आपकी सहायता करेगा? निश्चय ही। अब बस वहाँ बाहर विश्वास करते रहें, समझे? परेशानी आपके गर्दन में है, आपकी एक कार दुर्घटना हुई थी, आप उत्तर से यहाँ पर आए हैं, आप बेडफोर्ड इंडियाना के आसपास से हैं, ये सही है? क्या यह सही है? तो फिर क्या आप विश्वास करते हैं कि आपकी गर्दन ठीक हो जाएगी? जैसा विश्वास करेंगे ठीक वैसा ही आपके साथ होगा। घर वापस जाएं और परमेश्वर को महिमा दें, चंगा रहें। आप कैसे हैं श्रीमान? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपकी परेशानी को मुझ पर प्रकट कर सकता है? आप एक नसों की स्थिति से पीड़ित हैं, इससे आपको आंतों, मलाशय, आंतों की परेशानी हो गई है। आप वास्तव में कैलिफोर्निया से हैं, यह सही है? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जानता है कि आप कौन हैं, श्रीमान मुरे? तो ठीक है, ये अब खत्म हो गया है, अपने घर वापस लौट जाएं, पूरे हृदय से उस पर विश्वास करें। क्या हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं? मैं आपको नहीं जानता और परमेश्वर, मैं आपको नहीं जानता और आप मुझे नहीं जानते, हम अजनबी हैं। क्या ये सही है? यदि परमेश्वर आपके बारे में मुझे कुछ बताएगा तो क्या आप मुझ पर विश्वास करोगे कि मैं उसका नबी हूँ? क्या आप में से बाकी लोग विश्वास करेंगे? मैं हूँ, अब मुझे बहुत ही कमजोर बना रहा है। देखिए, बस अब विश्वास करें, मैं अब वो अभिषेक यहाँ है। आप ये जानते हैं? क्या आप नहीं जानते? आप जानते हैं कि यह यहाँ पर है। देखो, पवित्र आत्मा अब यहाँ है। यदि आप बस, मैं बहुत कमजोर हो रहा हूँ कि अब आपको बाहर नहीं देख पाऊंगा। देखा आप, यदि एक मामले ने यीशु को कमजोर कर दिया तो क्या हमारे यहाँ पर श्रोतागण में से होते हुए 7 या 8, 10 मामले होंगे? 5 या 6 या 7 यहाँ मंच पर हैं और 3 या 4 या 5 वहाँ पर हैं। देखा, इसने मुझे एक ऐसी जगह पर पहुँचा दिया है जहाँ से मैं अब और नहीं देख सकता। ऐसा दिखाई देता है जैसे सारी भीड़ दुधिया जैसी हो रही है। यदि आपको केवल यह एहसास हो कि पवित्र आत्मा की संघनता अंदर आ रही है, यही वो प्रकाश है जो इमारत के ऊपर मंडरा रहा है। देखो, यह वो आपको एक समूह में, एक स्थान में ला रहा है। अब क्योंकि यह महिला यहाँ पर खड़ी है, अब प्रार्थना पंक्ति में आपके लिए यदि परमेश्वर प्रकट करेगा, यहाँ मैं अपने हाथ ऊपर रखता हूँ, मैंने उस महिला को कभी नहीं देखा है, उसके बारे में कुछ नहीं जानता। यदि परमेश्वर ठीक ठीक प्रकट करेगा उसने क्या किया है या वो क्या है, या तो ठीक है उसके बारे में कुछ तो, और तो फिर क्या आप सब विश्वास करेंगे कि परमेश्वर ऐसा करता है? क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? और क्या आप स्वीकार कर सकते हैं? क्या आप विश्वास करेंगे कि आप अब जीवित रहेंगे? क्या आप कर सकते हैं? अवश्य ही, मैं आपकी परेशानी जानता हूँ, मैं आपकी परेशानी जानता हूँ, आपकी ये छिपी नहीं है। आप समझे, परमेश्वर उन चीजों को प्रकट करता है, लेकिन यदि आप केवल विश्वास करें। अब मैं वहाँ आकर और आप पर हाथ रखूंगा, क्योंकि मैं बहुत ही कमजोर होता जा रहा हूँ, और मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, ठीक है, मैं और नहीं देख सकता। देखो, अब आप पूरे हृदय से विश्वास करते हैं। अब याद रखें, यह मैं नहीं हूँ, यह हर कोई जानता है, यह पवित्र आत्मा है। अब यदि मैं उस महिला की आत्मा को पकड़ सकूं, यह वही चीज है जो यीशु ने की थी। उसकी आत्मा को पकड़ने की कोशिश करते हुए उसने कहा, मुझे पानी पिला। यहाँ एक पुरुष और एक महिला है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वहाँ थे। अब आप एक युवा महिला हो, मुझसे बहुत ही छोटी हैं। अब शायद हो सकता है यह महिला यीशु से छोटी थी, वो लगभग 33 वर्ष का था, और शायद वो 18 या 20 साल की भी नहीं थी, बस एक युवा महिला थी, और वो मुश्किल से समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहना है। लेकिन जब उसने उससे बात की तो उसने कहा, मुझे पानी देना। अब पिता ने उसे सामरिया की ओर भेज दिया था, वो येरियो के मार्ग पर था, लेकिन सामरिया की ओर चला गया जो पहाड़ के ऊपर है। उसने ऐसा क्यों किया? उसने कहा कि उसे वहाँ से होकर जाने की जरूरत है। पिता ने उसे वहाँ भेजा। खैर, वह बस आकर और बैठ गया, और कुछ खाने को लाने के लिए चेलों को नगर में भेजा, और यह सुंदर युवा महिला पानी लेने के लिए बाहर आई, और पिता ने अवश्य ही कहा होगा, मैं उसे बुला रहा हूँ। उसने कहा, स्त्री, मेरे लिए कुछ पानी लाना, और बातचीत शुरू हो गई। अब यहाँ भी वही बात है, क्या आपने अपना हाथ मेरे कोट पर रखा? आप में से एक ने? नहीं श्रीमान, स्वर्ग का परमेश्वर जानता है कि किसी चीज ने मुझे तब छुआ जब मैंने सोचा कि बिली ही मुझे जाने के लिए कह रहा है। देखो, मेरा हाथ, परमेश्वर जानता है कि यह सच है, किसी चीज ने मुझे इस तरह से छुआ और मैंने सोचा कि यह बिल्ली मुझसे जाने के लिए कह रहा है। देखो, मैं जब आप इस तरह से हो जाते हैं तो आप मुश्किल से ही जान पाते हैं, आप नहीं जानते कि कब रुकना है या क्या करना है। आप समझे, आप लगभग अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। मैं किस बारे में बात कर रहा था? कुएं पर स्त्री। और फिर जब उसने जान लिया कि उसकी परेशानी कहां पर है, और उसने कहा, जाकर अपने पति को बुला लाओ। उसने कहा, मेरे पास कोई नहीं है, और उसने उससे कहा कि उसके पास 5 थे। फिर उसने कहा, मैं मान लेती हूं कि तू एक भविष्यवक्ता है, मैं जानती हूं कि जब मसीहा आएगा तो वो हमें ये बातें बताएगा। अब क्या वो आज भी वही मसीहा होगा? यदि मैं आपको कुछ बता सकूं, कुछ ऐसा जो आपके साथ गलत है, यदि परमेश्वर आपकी सहायता नहीं करेगा तो आप मर जाएंगी, आपको कैंसर हुआ है। अब क्या आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर मुझे बता सकता है कि कैंसर कहां पर है? यह गर्भ में है। क्या आप विश्वास करती हो कि परमेश्वर जानता है कि आप कौन हैं? क्या आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर जानता है कि आप कहां से आई हैं? आप इलिनॉइस से हैं, आपका नाम श्रीमती जॉनसन है, वापस जाएं और जीवित रहें, यीशु मसीह आपको चंगा करता है। क्या आप पूरे हृदय से विश्वास करती हैं? बस वो जिए, मैंने आपको जीने का एक कारण बताया है। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम में मैं अब उस महिला पर अपना हाथ रखता हूँ। पवित्र आत्मा का अभिषेक यहाँ पर है, प्रभु उसे चंगा करें मसीह यीशु के नाम में। प्रिय परमेश्वर, हमारे बहुमूल्य भाई पर, जिसे आपने वहाँ पहले अगस्त में उसके जीवन को बचाया था, दयालु परमेश्वर, अब उसके पास आए जबकि पवित्र आत्मा हमारे हृदय को अभिषेक कर रहा है। मैं अपने भाई की परीक्षा को जानता हूँ। प्रभु उसे चंगा करें और उसे स्वस्थ बनाएं। आपको दिल का दौरा पड़ा था, आपको मधुमेह हुआ है, हालांकि मैं जानता हूं कि आप पीड़ित हैं, यही हमारे स्वर्गीय पिता, यह व्यक्ति, उसे आपको ढूंढना होगा या मरना होगा। वो अस्पताल जाना पसंद करता है। उसके पापों को क्षमा करें और यीशु मसीह के नाम में उसके शरीर को चंगा करें। होने पाए वो जीवित रहे। जाइए, घर जाइए। तो ठीक है, यहाँ आप सब इस भाई को घर ले जाएं। हमारे बहुमूल्य परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मेरे हाथ उस पर हैं, जबकि पवित्र आत्मा का अभिषेक यहीं पर है। लोग इसे पहचाने, उसे चंगा होने दो। पिता परमेश्वर, जब मैं अपने हाथ रखता हूँ, मेरे हाथ, मेरा शरीर अयोग्य है, भ्रष्ट है, दूषित और बुरा है, लेकिन पवित्र आत्मा अब मुझ पर है। होने पाए वो सामर्थ जो हृदय के विचारों को जांच सकती है, इस महिला की रक्षा करे और उसके शरीर को चंगा करे यीशु के नाम में। प्रिय परमेश्वर, ये जानते हुए मेरे भाई और उसकी हालत, ये जानते हुए कि बोलने में यह रुकावट हो रही है, हे परमेश्वर, इस युवा व्यक्ति के बारे में जो विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ रहा है, यहोवा यीरे की उपस्थिति में खड़ा है। प्रभु का प्रदान किया गया बलिदान, होने पाए वही सामर्थ जिसने यीशु को कब्र में से जिला उठाया, ठीक अभी उसे छू ले। उसके हृदय की इच्छा को उसे दीजिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु यीशु, अपनी बहन पर मैं अपना हाथ रखता हूँ यीशु मसीह के नाम में। होने पाए वे आंखें चंगी हो जाएं, होने पाए उसका रोग उसके शरीर से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हमारे स्वर्गीय पिता, या मेरी छोटी बहन किट के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आप उसमें जयवंत होंगे और उसे उसकी बूढ़ी आयु में शक्ति दे, जैसे आपने नियोमी को दी। प्रभु, होने पाए कि उसका अब भी आपकी महिमा के लिए उपयोग हो, इसे प्रदान करे पिता यीशु मसीह के नाम में। और भाई किट को, प्रभु, मृत्यु ने उस पर प्रहार किया परंतु जीवन उसे वापस ले आया। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उसे मजबूत रखेंगे। उसने अपना निर्धारित समय पार कर लिया है, परंतु आप परमेश्वर हैं और आप इसे अपनी महिमा के लिए करेंगे, जैसा कि आपने मुझसे अस्पताल में प्रतिज्ञा किया था। अब उसे गवाही देने के लिए शक्ति देना। होने पाए कि इसकी गवाही ओहियो प्रांत में धूम मचा दे, समस्त संसार भर में।
I'll take him at his word.